এবার করুণা করো বৈষ্ণব পতিত পাবন পতিত পাবন তোমার Thank you. ठाने अपराधे तारे हरि नाम অপরাধে নাই করিতা তোমার স্থানে অপরাধে
आविर्भाव परमेश्वरी दास ठाकुर अभी सब लिखना चाहिए ना कुछ लिखने किसका पर क्लास किसे क्या लिख दिया लिखने वाला कहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य ज्येष्ठ प्रसत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमती भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य जी भाई निवेश श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुल श्याम कुल की गोवर्धन की जय। श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्री भागवतम की जय। वैशाख पूर्णिमा की जय। श्री श्री राधा रमण आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री श्री श्रील माधवेन्द्रपुरी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय। परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्री और क्या है, और भी कुछ है? बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आ जाए बुद्धदेव के। तो क्या सुनना चाहते हो? सब तो नहीं बता सकते इतना सारा, सबसे थोड़ा थोड़ा सुनना चाहते कि ना? हैं, कारण जो पता है आप लोग को, पता नहीं? ओ मज्ञाना तिमिरंधस्य जनांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददातीशो पदान्तिकम्। वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं साअवधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले किसके बारे में सुनना है? तो लिखना चाहिए ना, बोर्ड में लिखना चाहिए, कुछ नहीं बस लगे रही बस विशेष भगवत क्या है, किसके आविर्भाव किसमें तिरुभाव, कुछ नहीं लिखना है। परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में कितने लोग जानते हैं? आज परमेश्वरी दास ठाकुर के तिरुभाव है, कितने लोगों को पता है परमेश्वरी दास कौन है? जितने जितने पढ़ते हैं किसको पता है परमेश्वरी दास कौन है? पता है चैतन्य चरिता में तो आदि लड़ा है 11 अध्याय में नित्यानंद पार्षद व नित्यानंद के विस्तार में 29 नंबर श्लोक। परमेश्वर दास नित्यानंद शरण कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण। परमेश्वरी दास नित्यानंद प्रभु के चरण के शरणागत है व नित्यानंद प्रभु के पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति पाए तारे जे करे स्मरण, जो इनके स्मरण करता है इसको भगवान श्री कृष्ण के चरण में शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। किनको? परमेश्वरी दास। परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला के तो अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा परमेश्वर परमेश्वर दास जो कृष्णलीला के पांचवें गोपाल कहे जाते हैं वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में पूरी तरह से समर्पित थे। जो कोई उनकी इस नाम परमेश्वर दास का स्मरण करेगा उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हैं पढ़ते नहीं चेतन कहते परमेश्वरी दास नित्यानंद ये अर्जुन सखा थे। कृष्णलीला में कौन थे? अर्जुन द्वारस गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रजलीला में जो 12 मुख्य गोपाल थे उनमें से द्वादश गोपाल में पांच नंबर के गोपाल थे अर्जुन सखा। ये महाभारत के अर्जुन नहीं, ये ब्रज के अर्जुन है। पांच नंबर के सखा थे अर्जुन सखा। ये अर्जुन सखा ने नित्यानंद प्रभु की लड़ा में किस प्रकार अवतरण हुए परमेश्वरी दास के रूप में। श्रील भक्ति तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि चैतन्य भागवत में गया कहा गया है कि परमेश्वरी दास जिन्हें कभी कभी परमेश्वर दास भी कहा जाता था नित्यानंद प्रभु के सर्वस्व थे। परमेश्वर दास का शरीर नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का स्थल था। परमेश्वर दास कुछ काल तक खड़गहर गांव में रहे और वे सदैव गोपाल व ग्वाल बाल के भाव से अभिभूत रहते थे। पूर्व जन्म में वे कृष्ण तथा बलराम के मित्र अर्जुन थे। 12 गोपाल में से वे पांचवें गोपाल थे। वे खेतरी में संपन्न उत्सव में श्रीमती जाह्नवा देवी के साथ गए थे। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि श्रीमती जाह्नवा माता के आदेश से उन्होंने हुगली जिले के आटपुर स्थान पर राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की। आटपुर स्टेशन छोटी लाइन पर हावड़ा तथा अमाता के बीच स्थित है। आटपुर में एक दूसरा मंदिर है जिसे ये मंदिर के सामने दो बकुल तथा एक कदम वृक्ष के बीच परमेश्वरी दास ठाकुर की समाधि है और उनके ऊपर वेदिका पत्थर है जिस पर तुलसी का पौधा है। कहा जाता है कि कदम के वृक्ष पर वर्ष में केवल एक फूल लगता है जिसे अर्चा विग्रह पर चढ़ाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वरी दास ठाकुर वैद्य परिवार के थे। उनके भाई का एक वंशज इस समय मंदिर के पुजारी है। उनके परिवार के कुछ लोग अब भी हुगली जिले में चंडीखोल डाकघर के पास रहते हैं। चलो तो इस प्रकार परमेश्वरी दास के बारे में आपको जनराज प्रभुपाल ने बताते कि ये कृष्णलीला के अर्जुन सखा थे और नित्यानंद ये इस लड़ा में नित्यानंद प्रभु की पार्षद के रूप में भूमिका निभाए और इनके बारे में बहुत सुंदर कहानियां अन्यत्र भक्ति रत्नाकर आदि में किताब में भी दी गई है। परमेश्वरी दास ठाकुर हैं बहुत बड़े जो नित्यानंद पार्षद माने जाते हैं द्वादश गोपाल में से गोपाल मानते हैं जिसे गोद गणदीपिका में कहा गया नामना अर्जुन सखा प्राग यह दास परमेश्वर। जो अर्जुन सखा कृष्णलीला में थे वही परमेश्वर दास ठाकुर के रूप में गौरलीला में अवतीर्ण हुई और जैसे प्रभुपाद ने लिखे कि ये खड़गा आटपुर में एक मंदिर बनाया राधा गोपीनाथ मंदिर किसके निर्देशन में? नित्यानंद प्रभु के बाद जाह्नवा माता के निर्देशन में। तभी कहा जाता कि ये गांव में दो बकुल के पेड़ ऐसे बकुल के दांतुन घस के ऐसे दो दांतुन से गाढ़ा दे दिए ऐसे मैंने जो छाया के लिए दांतुन गाढ़ा देते ही तुरंत क्या हो गया वृक्ष बन गया। दांतुन गाढ़ा दिया और दांतुन तुरंत ही वृक्ष में परिणत हुआ बहुत सुंदर वृक्ष। दो बकुल आज भी वृक्ष वो उसी गांव में है दो बकुल वृक्ष उसके बीच में कदम वृक्ष है और प्रभुपाद कहते कि वही दो बकुल वृक्ष और कदम वृक्ष के बीच में इनकी समाधि दी गई इनकी समाधि है इनकी आज इनके तिरुभाव है परमेश्वरी दास ठाकुर। ये बड़े कई अद्भुत कार्य अपने लीला में प्रकट किए। एक बार अपने गांव में कीर्तन करते थे बैठकर भक्तों के साथ में कीर्तन चल रहा था और ये स्वयं कीर्तन लीडिंग करते थे कौन? परमेश्वरी दास। तो कुछ पाखंडी लोग थे पास में जो नास्तिक व्यक्ति हैं सब और कुछ मुसलमान थे कुछ पास में बोले बोले अरे क्या है वैष्णव लोग कीर्तन करते एक मरा हुआ गिधड़ को लाकर बीच में क्योंकि मजाक करने के लिए फेंक के भाग गए मरा हुआ गिधड़ को लाकर फेंक दिया मरा हुआ गिधड़ को देखकर कीर्तन सब भाग गए सब डर से सबको उठ के बोले लेकिन परमेश्वरी दास ठाकुर उस गिधड़ को तरफ करुणा दृष्टि में देखी और गिधड़ भी जीवित वो गिधड़ भी जीवित हो गया मरा हुआ गिधड़ जीवित हो गया और कीर्तन के बीच में वो गिधर भी नाचने लगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये इनकी विशेष का चमत्कार, जो नास्तिक लोग ने जो गिधड़ पे की भाग गए थे, देखिए गिधड़ भी जीवित हो गया और नाच रहा है कीर्तन के बीच में, तो सभी लोग आकर फिर दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके परमेश्वरी दास से माफी मांगे हैं, हम लोग गलती किया। इस प्रकार ये सभी फिर वैष्णव बन गए। कौन? जो लोग ने ऐसे ही बुरे कार्य किया था, ये लोगों ने अपने पश्चाताप किए और सभी वैष्णव बने। और ये कहां पर हुआ था ना, कमलाकर पिपिलाई और एक नित्यानंद रूपा, उनकी घर में कीर्तन हो रहा था, जो भी गिदड़ को लाकर नास्तिक लोग फेंक दिए थे। और ये विशेष में नित्यानंद प्रभु को बड़े प्रिय थे और इनकी बात था केतुग्राम, तो इसलिए आप कम से कम जानना चाहिए परमेश्वरी दास ठाकुर कौन है। हर साल हम वैष्णव कैलेंडर में देखते हैं इनके नाम परमेश्वरी दास के फिरोभाव आविर्भाव, लेकिन परमेश्वरी दास कौन जानना चाहिए, थोड़ा आइडिया हुआ कौन परमेश्वरी दास है, कौन है? पांचम गोपाल के नित्यानंद प्रभु के पार्षद मान, जैसे गोरु पार्षद में गोरु पार्षद कुछ होते, कुछ नित्यानंद पार्षद होते, कुछ अद्वैत आचार्य के पार्षद होते हैं, मैंने उनकी गण माने जाते हैं। ये अद्वैत आचार्य के शरण में, नित्यानंद के शरण में, और कुछ लोग गौरांग के डायरेक्ट शरण में रहते हैं, और कुछ लोग गदाधर के शरण में भी है, गदाधर पंडित के पार्षद है। तो इनमें से ये किसके पार्षद थे? नित्यानंद प्रभु के, नित्यानंद प्रभु के शरण में रहते, नित्यानंद शरण है परमेश्वरी दास नित्यानंद शरण कृष्ण भक्ति पाए तारे जय करे स्मरण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने सुनना चाहते श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में है, कौन? बनमाली दास को। श्रीनिवास आचार्य बहुत बड़े आचार्य, टाइटल ही इनको आचार्य कौन दिया, कौन दिया इनको टाइटल आचार्य? घर के टाइटल की ना कोई दिया इनको आचार्य टाइटल है, इनको जीव गोस्वामी ने आचार्य टाइटल दिया है। तीन पढ़े थे उनके साथ में पढ़ाई करते थे, उनके पास में बैठकर शास्त्र पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, कौन कौन? श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो ये तीनों को नरोत्तम ऐसे ही नरोत्तम नाम था, लेकिन इनको ठाकुर महाशय नाम, ये टाइटल भी जीव गोस्वामी ने दिया, ठाकुर महाशय टाइटल दिया गया था नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास को, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर भजन रचना कर सकते थे और गा सकते थे, इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अपने कवि सब लोग नहीं होते हैं, कवि ऑटोमेटिकली अपने इसको, हम जैसे कोई बातचीत बोलते हैं पद्य, आप गद्य आकार से आता है, कोई कवि होता तो वो ये बोलेगा पद्य रूप में उसके मुख से निकलता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महान वैष्णव कवि व महान भक्त संत थे, जो कि कीर्तन में विशेष रूप में उनकी महिमा को देखकर जीव गोस्वामी ने उनको ऐसे ही टाइटल दिया था कि नरोत्तम ने ठाकुर महाशय। और बुद्धिस्ट नहीं बनना है, बुद्ध पूर्णिमा बात नहीं रखी, ठीक है वो लेखा तो ठीक है, माधवेन्द्रपुरी राधारमणी प्रखंड, ठीक है जो और भी कई है तो तीन लेखा कम से कम, परमेश्वरी दास तिरुभाव बोल चुके चलो। तो ठीक है क्या बोल रहा था मैं, श्रीनिवास आचार्य, वहां ध्यान में श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि ये भागवत की विशेष पारंगम थे, कौन? श्रीनिवास आचार्य। इनकी जो भागवत की जो व्याख्या है, ये व्याख्या जीव गोस्वामी बड़े प्रशंसा करते थे, उनकी जो व्याख्या भागवत की करते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे श्रीनिवास आचार्य, इनके समान भागवत की व्याख्या करने वाला बहुत विरल देखा जाते हैं। इन्होंने एक एक श्लोक कम से कम 10-12 टोन में गा सकते थे, श्रीनिवास आचार्य भागवत के जो एक एक श्लोक है उनको बहुत सुंदर गाते थे, एक एक श्लोक कई टोन में गा सकते हैं, एक ही सेम श्लोक लेकिन कम से कम 10-11 अलग अलग टोन में गाने में इनके पास क्वालिटी था, और व्याख्या करने में बड़े पारंगम थे, इसीलिए इनको जीव गोस्वामी ने टाइटल दिया क्या, आचार्य, ये भागवत के आचार्य है, उनका आचार्य टाइटल जीव गोस्वामी ने, जैसे महान पंडित वो भी इसको इनको टाइटल दी। श्यामानंद तो उनके नाम था पहले दुखी कृष्णदास, लेकिन वो श्यामा अर्थात राधारानी के आनंद, राधारानी की कृपा प्राप्त करने के कारण उनको नाम क्या दिया गया, श्यामा, श्यामा अर्थात राधारानी के आनंद से जो आनंदित हो गए उनको श्यामानंद कहा गया। तो जीव ये जो श्रीनिवास आचार्य इनके पिताजी के नाम था ये चाखंडी ग्राम में इनकी जन्म हुआ था। पिताजी थे इनके गंगाधर भट्टाचार्य, लक्ष्मी प्रिया देवी इनके माताजी थे। लेकिन ये गंगाधर भट्टाचार्य बाद में चैतन्य दास के रूप में जाना गया, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जो संन्यास लिए, ये संन्यास महाप्रभु जो संन्यास लिए, तो ये चैतन्य दास सुनकर बड़ा विहोड़ होकर देखे गए काटवा में संन्यास श्रीमणि देखने के लिए। महाप्रभु के जो संन्यास लिए गौरांग महाप्रभु देखे ये पागल हो गए, उनके नाम बदल गया। क्या नाम हुआ? चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। पहले क्या था? पहले विश्वंभर निमा ऐसे नाम था। संन्यास लेने के बाद उनके संन्यास गुरु जो केशव भारती, उनके नाम रख दिए श्री कृष्ण चैतन्य है। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण दिन रात रटते रहा। कौन? ये चैतन्य दास। इसलिए उसको इतना पागल हो गया कि रात भर सोना भी सोने था, रात को भी कभी कभी चिल्लाता था श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण। तो इसलिए पब्लिक ने सब लोग मिलकर इसका नाम ही रख दिए चैतन्य दास है। पर महाप्रभु के नाम दिन रात रखता था वो, और वो दृश्य को उसको सामने आता था कि किस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास लिया कैसे भारती, बड़े दुखी था। लेकिन ये दोनों एक बार महाप्रभु के पास पुरी में जो संन्यास लेकर आ गए, फिर भी अपने पत्नी को साथ में लेकर ये चैतन्य दास ने, अरे सुना इधर लड़की चल रहा बस है? एक जा रहा एक लिख रहा है, दूसरा जा रहा दूसरा लिखाएगा, फिर लिखेगा, बस चलते रहेंगे पूरा क्लास। हरे कृष्ण। तो ये जो श्रीनिवास जी जो माता पिता थे गंगाधर चक्रवर्ती, बाद में वो चैतन्य दास के रूप में प्रसिद्ध हुए, और उनके माता जी थी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, महाप्रभु के महान भक्त थे दोनों। दोनों को दोनों गौरांग महाप्रभु बड़े प्रेम करते थे, बात चलिए। तो ये लोग ने गए पूरी में संन्यास लेकर, महाप्रभु आने पर भी फिर दोनों आए महाप्रभु को दर्शन करने। जो दर्शन करने के लिए आए, महाप्रभु ने गोविंद को कहे कि देखो ये जो पति पत्नी आए हैं, इनके मन में पुत्र की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। ये आए इसलिए कि जगन्नाथ जी को दर्शन करके जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने के लिए। किसका क्या प्रार्थना करने के लिए? ये पुत्र की कामना करके ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और ये मुझे बड़े प्रिय है दोनों को, दोनों महान भक्त हैं। और आप आज के जो मेरे प्रसाद रहेगा, आप खाने के बाद मेरे महाप्रसाद, महा महाप्रसाद जो भी मेरे प्लेट प्लेट में रहेगा, ये दोनों को दे देना। किनको? हैं पिताजी कौन, क्या नाम? चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया देवी। लेकिन इनको आज दे देना है, ये दोनों पुत्र की कामना लेकर आए हैं। और जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने, सॉरी भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि कते दिन नीला चले उतरी लागिया, प्रभुर दर्शन लागी उत्कंठिता हिया। बहुत दिन चल चल के बंगाल से जाकर महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु दर्शन करने के लिए बड़े उत्कंठित थे। गौरांग महाप्रभु ने इनको देखा, देखकर कहे कि ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, चलो चलो जगन्नाथ करह दर्शन, करीबे कामना पूर्ण श्री पद्म लोचन। कहे जाओ जाओ जगन्नाथ जी को दर्शन करो। महाप्रभु पता था कि पुत्र की कामना लेकर आए, कहे जाओ आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा, आशीर्वाद दे दिए। कौन? गौरांग महाप्रभु। ये जो श्रीनिवास आचार्य जो आविर्भाव, इनकी पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, इसकी भविष्यवाणी कौन कर दिया था? महाप्रभु ने स्वयं कर दी थी। उन्होंने गोविंद और आपने कहे कि देखो इन जो पुत्र प्राप्त होगा ये महान आचार्य बनेगा, भागवत की बहुत प्रचार करेगा। गौरांग महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी। और इसी प्रकार वो दोनों जब इनके जब माता पिता गए थे, गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करके उनकी उचिष्ट महाप्रभु की महा महाप्रसाद उनको प्राप्त हुआ। और जब महाप्रभु के आशीर्वाद हुआ तो फिर जगन्नाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त किए, एक पुत्र की कामना कर गए थे। तो इस प्रकार जब उन्होंने आए एक साल के बाद, वैशाख पूर्णिमा दिवा रोहिणी नक्षत्र शुभ क्षण लक्ष्मी प्रिया प्रसविला पुत्र। वैशाख पूर्णिमा के रोहिणी नक्षत्र में शुभ क्षण में लक्ष्मी प्रिया देवी इनको जन्म दी। किसको? श्रीनिवास आचार्य जिनके पुत्र श्रीनिवास, इनके नाम है लोग रखा श्रीनिवास, पुत्र के रूप में है, पुत्र जन्म हुआ। और जन्म से इनके शरीर में पूरे द्वादश महापुरुष के लक्षण दिखाई पड़ता था। किसके शरीर में? श्रीनिवासाचार्य के। प्रकरण में तीनों प्रभु श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, ये तीनों को तीनों के विस्तार व अवतार शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। किन किन गौरांग महाप्रभु के शक्त्यावेश अवतार के रूप में श्रीनिवास आचार्य माने जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के विस्तार व उनके शक्त्यावेश के रूप में नित्यानंद शक्ति को धारण करने वाले नरोत्तम दास ठाकुर, और अद्वैत आचार्य के विस्तार व उनकी शक्ति को धारण करने वाले कौन, श्यामानंद प्रभु। ऐसा ही गौड़ी आचार्य लोग ने, पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने इसे मतामत पोषण किए हैं। लेकिन ये जो पुत्र हो, इनके जन्म हुआ तो चाखंडी ग्राम में, बाद में इन्होंने जाजी ग्राम में इनके मां की घर था। मां अब जो जाओगे काटुआ, काटुआ से दो किलोमीटर आगे जाओगे जहां पर महाप्रभु संन्यास लेते, आगे जाओगे अभी भी उनकी सिपाट है, जिनकी श्रीनिवास आचार्य की सिपाट है, जाजी ग्राम। क्या कहते हैं जाजी ग्राम, प्राय हर्षल आप जा सकते हो, हम गए थे भी थोड़ा दिन पहले गुरु पूर्णिमा समय, प्राय वो मंदिर तोड़ने वाला है, जिस जो श्रीनिवास आचार्य जो सिपाट था, जो मंदिर है पूरे से खंभे से तोड़ गए हैं। तभी तो वहीं पर उन्होंने जो इनके पिताजी की देहांत के बाद उन्होंने जाजी ग्राम में ही आकर सेटल हो गए, वहीं पर अपने निवास करने लगे श्रीनिवास आचार्य, और उनके साथ में भी उनकी मित्र नरोत्तम दास ठाकुर के साथ उनकी बहुत मित्रता था। किनके, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और दोनों श्यामानंद प्रभु तो उड़ीसा के थे और ये दोनों बंगाल के थे, इसलिए ये दोनों बहुत मिलजुल पर आप, ये श्यामानंद प्रभु आज उड़ीसा में प्रचार करने लगे, जो समय भेज दिए उड़ीसा। तीनों को सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी निकाला था वृंदावन, सबसे पहला जो संकीर्तन पार्टी हमारे गौड़ी संप्रदाय की, सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी ये तीनों मिलकर निकाले थे। कौन कौन, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। आप सोचते ना कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से काम है नया भक्तों की है, ये सब द्वितीय सिद्ध पार्षद थे। श्यामानंद प्रभु को राधावाणी के डायरेक्ट कृपा प्राप्त हो चुका था जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकले था, साक्षात दर्शन दिए थे। कौन, राधा ने साक्षात दर्शन देकर उनके माथा के तिलक अपने हाथ से ही अंकित कर दी थी। कौन, राधारानी ने, नासार्ध केश पर्यंत जो तिलक राधारानी ने अपने हाथ से ही अंकित की थी श्यामानंद प्रभु की। और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में जाने, श्रीनिवास आचार्य भागवत के आए, जिनको सब उपाधि से ही टाइटल देकर जीव गोस्वामी कहे कि आप लोग उसको पढ़ाया मैं भागवत, अभी आप लोग भागवत पढ़ लिए तो पंडित बन गए, सिद्ध बन गए, पहले साधक थे अभी तो आप लोग सिद्ध बन चुके अभी है? इनके स्वरूप भी इनको प्रकट हुआ, उस जानते हैं मैं कौन हूं। नरोत्तम दास ने नरोत्तम दास ठाकुर उनसे, वो भी मंजरी थे, मंजरी स्वरूप आते हैं चंपक मंजरी, और श्यामानंद प्रभु कनक मंजरी, और ये थे मणि मंजरी। कौन, श्रीनिवास आचार्य, राधारानी के नित्य पार्षद सेविका दासी थे, अपने सिद्ध, ये साधक नहीं थे हमारी तरफ, ये सिद्ध थे, नित्य सिद्ध गौर पार्षद थे राधा कृष्ण जला में भी। फिर भी पढ़ाई करने के बाद, इनको भागवत पढ़ाने के बाद क्या कहे जीव गोस्वामी, प्रचार में जाओ। हम सोचते प्रचार करना, जो ये नया भक्त जैन करते हैं उन्हीं को जाना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, नहीं, ये जो पढ़ने के बाद सिद्ध बनने के, साधक से सिद्ध बनने के बाद फिर भी जीव गोस्वामी को कहे कि गोस्वामी लोग सब लिटरेचर लिखे हैं, हम लोग इतने परिश्रम करके लिखे हैं, इसका प्रचार होना चाहिए, और आप तीनों इनको लेके जाओ। उस समय बस बस नहीं था, कैसे लेके गए, बैल के गाड़ी में लकड़ी का बॉक्स बनाकर उसके अंदर से किताब रख के सुरक्षित करके, वो फिर हैंड रिटन स्क्रिप्ट था, ऐसे प्रिंटेड वाला नहीं था, उसको सब भोजपत्र में सब रखा हुआ था उस पुस्तक। तो पहला संकीर्तन पार्टी जो निकला उसके लीडर कौन बने, श्रीनिवास आचार्य, और दोनों असिस्टेंट थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, ये तो उनको सहायता करने वाले। तो पहला संकीर्तन पार्टी के ये लीडर बने, जीव गोस्वामी इनको भेजे। श्रीनिवास आचार्य जब वृंदावन में पहुंचे तभी गुरु ढूंढने की सोचते थे, किसको कहा, किसको मैं गुरु बनाऊं, अपने गुरु के ढूंढ में थे। तो जीव गोस्वामी सोचते थे, तो वो भी खुद अपने दिखा दे सकते थे, नहीं, जीव गोस्वामी ने कहे कि वो अपना इच्छा को व्यक्त किए, मैं आध्यात्मिक गुरु की ढूंढ में हूं। तो इनको लेकर गए जीव गोस्वामी, किसके पास, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, आज राधा राम का आविर्भाव है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास ले गए। तो आजकल क्या होता है, यदि कोई अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, अब कोई भी गुरु सोचता है मेरा शिष्य बन जाए, लेकिन ये देखो मैंने इतने क्वालिफाइड थे श्रीनिवास आचार्य देकर जीव गोस्वामी के पास पहुंचे, लेकिन जीव गोस्वामी डायरेक्ट दिखे नहीं दिए, बोले चलो हाँ कहाँ तुम्हारे लाइक गुरु है, लेकिन श्रीनिवास आचार्य के पास पहुंचा है, श्रीनिवास आचार्य खैर इनको दिखाया गया, ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हैं। सर श्रीनिवास आचार्य कौन, गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके शिष्य है श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य को जीव गोस्वामी लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुंचे, गोपाल भट्ट गोस्वामी इनको दिखा दिए, किनको, श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर दोनों थे, बाद में श्यामानंद आ गए, इस प्रकार तीनों जीव गोस्वामी से अध्ययन किए, बाद में तीनों ही एक साथ में ब्रजमंडल परिक्रमा किए, राघव पंडित इनको लेकर पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा कराए, ये सब भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में डिटेल बताया गया है। और ये ऐसे ही आचार्य कहते कि ये जब इनके जीवन पूरा दुख में दुख, इतने दुखी थे जहां भी जाते थे वहां पर पहुंचते ही जो आचार्य लोगों ने सब अंतर ध्यान होते जाते थे। ये जब नवद्वीप में भ्रमण करने के लिए आए, नवद्वीप आए तो अद्वैत आचार्य को मिलने गए, तो अद्वैत आचार्य अंतर्ध्यान, नित्यानंद प्रभु गए तो अंतर्ध्यान हो गए, आकर जहां भी जाते थे देखते थे कि वहां अंतर। पुरी में गए तो वहां गदाधर पंडित से पहली बार गए, उनसे भागवत सीखे, इन्होंने गदाधर पंडित से डायरेक्ट भागवत पढ़े थे, जीव गोस्वामी के पास में आने के पहले वहां गए थे, कहां पुरी, जानवा माता ने इनको पुरी भेजे थे जाकर गदाधर पंडित से भागवत सीखो, गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में भागवत की आचार्य थे, पुराण महाप्रभु जो भागवत सुनते थे गदाधर पंडित राधारानी के अवतार उनके मुख से सुनते थे। लेकिन ये गए गदाधर पंडित के पास में श्रीनिवास आचार्य भागवत पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ाया, लेकिन वहां से थोड़ा दिन फिर दोबारा जो गए तो अंतर ध्यान हो गए, कौन वो नित्यालय में प्रवेश कर चुके, गदाधर पंडित से फिर वो अपने महाप्रभु ने, वो महाप्रभु दर्शन करने के लिए जाते थे, महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, पहुंचते ही पूरी चैतन्य महाप्रभु थोड़े दिन पहले ही, दो चार दिन पहले ही अंतर ध्यान हो चुके थे। फिर गदाधर पंडित के पास गए, वहां उनसे भागवत सीखे, भागवत पढ़े, फिर वहां से आए, आकर जब रास्ते में इनको खबर मिला कि गदाधर पंडित अंतर्ध्यान, आगे जब नवद्वीप को अप्रोच करते थे, नवद्वीप पहुंचते थे तो कहे कि सुना इनको पता चल लग गया कि गदा ने श्रीनिवास सॉरी अद्वैत आचार्य अंतर ध्यान हो गए। फिर खड़गे की तरफ नित्यानंद प्रभु के घर की तरफ जाते थे, हम खबर मिल गया कि कौन अंतर ध्यान हो गए, नित्यानंद प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इसे कहते कि इनके जीवन बड़े दुख से, बार 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 जहां भी जाते थे अंतर ध्यान हो जाते थे, इसलिए इन्हें बड़े दुखी दुख से जीवन बिताए थे। लेकिन जब नरोत्तम के समान, नरोत्तम दास समान जब इनको एक मित्र मिल गए, फिर बड़े आश्वस्त रहे, नरोत्तम दास और वो दोनों बैठकर एक साथ में अपने जाजीग्राम में भजन करते थे और भागवत की चर्चा करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर भजन गाते थे और ये भागवत के व्याख्या करते थे, ये जो भजन गाते थे नरोत्तम दास ठाकुर, ये भजन सुनते थे साथ में भजन करते थे, फिर भजन खत्म हो जाता था फिर ये बैठकर भागवत पढ़ते थे, नरोत्तम दास ठाकुर बैठकर भागवत श्रवण करते थे, दोनों के इस प्रकार बड़े मित्रता था। एक दिन दोनों के भागवत चर्चा सुबह सुबह जब भागवत चर्चा करते थे और वो रास्ते में एक शादी का पट्टी जा रहा था, शादी में जो पार्टी में जो बैठा था पालिंग पर, वो राजकुमार की तरफ दिखाई पड़ता था, बहुत सुंदर चेहरा वाले व्यक्ति था, बहुत विद्वान पूछे, श्रीनिवास पूछे कि ये व्यक्ति कौन है तो बैठा, लेकिन जो शादी में जो बैठने वाला व्यक्ति था पालिंकी में, तो वो तुरंत देख रहा था किसकी तरफ, श्रीनिवास आचार्य देखता और श्रीनिवास आचार्य जी को उसकी तरफ भी देख रहे थे, देखिए राजकुमार के श्रम बने राजा के पुत्र की तरफ ऐसा चेहरा है, लग रहा है कि बहुत बड़े विद्वान हैं, उसके माने हाव भाव से ही प्रतीत हो रहा है, तो लोग भी कहे हाँ आचार्य जी ये बड़े पंडित है, ये भी बड़े कविराज है, इसकी टाइटल ही क्या कविराज, रामचंद्र कविराज, रामचंद्र जी इनके नाम रामचंद्र हैं और ये बहुत बड़े विद्वान है और जमींदार के घर के लड़का भी है। तो श्रीनिवास आचार्य ने कहने लगे अच्छा नरोत्तम दास भी दोनों देखें, बोले कि ऐसे व्यक्ति यदि हैं अभी कहाँ जा रहा संसार में फंसने के लिए, यदि ये भगवान के महान भक्त बन जाए हैं और प्रचार में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए तो सारा जगत की कल्याण कार्य में उसके जीवन नियोजित होता है। ऐसे ही खाली उसको देखे श्रीनिवास आचार्य, उसको एक तरफ देखे और वो भी एक बार देखे कौन रामचंद्र कविराज श्रीनिवास को, लेकिन जो रामचंद्र कविराज अपने घर में गए शादी में साथ प्रोसेशन में जा रहे थे पत्नी के साथ, लेकिन घर में जाने के बाद वो छवि इनको सब समय दिखाई पड़ा। किनका छवि? श्रीनिवास आचार्य का चेहरा इनको केवल दिखाई पड़ा। और रात भर नहीं गए थे, वही बात को सोच रहे थे, उनके कान में दो शब्द पड़ गया था, ये जो व्यक्ति राजकुमार की तरफ दिख रहा है और इतनी बड़े पंडित है, यदि अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्सर्ग कर देगा कितनी अच्छा होगा, सारा जगत के कल्याण कार्य में यदि सेवा में जीवन को उत्सर्ग करेगा, है? इतना बात उसके कान में पड़ गया था, इसलिए वो जो घर में जाकर वो रह नहीं पाए। रात में नहीं, जो आधा रात से उठकर आ गए सीधा श्रीवाचार्य के पास, घर में जाकर छुपकू गांव में कहीं रहे और देखे आचार्य जी ने सुबह सुबह आकर नरोत्तम दास का झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, हम सब आगे पहुंच गए, पहुंच के इनको परिचय दिए। श्रीनिवास आचार्य जी को देखे, देखकर पहुंचा नहीं, तुरंत आलिंगन किए, एक जन्मे जन्मे तुम्हें बांधव अमार, एक जन्म में नहीं जन्मे जन्मे तुम हमारा मित्र है, है? और फिर वो घर में वापस में वहीं रहे और भागवत पढ़े श्रीनिवास आचार्य भागवत, नरोत्तम दास ठाकुर से भजन सुनते थे, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कई भजन में कहते हैं रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, कई भजन में कहते कि प्रभु मुझे यदि दो बार इस धरा पर जन्म मिले तो फिर मुझे रामचंद्र कविराज जैसे भक्त का साथ संग जैसे मिल जाए। प्रसिद्ध भजन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकर लास्ट लाइन में कहते कि रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। ये रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा लेकर थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को भी बड़े प्रिय थे रामचंद्र कविराज। इस प्रकार ये भागवत की आध्यात्मिक रूप में विशेष रूप में प्रसिद्ध है। जब किताब पार्टी जाकर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जा रहे थे और बिहार के बॉर्डर में पहुंच गए, बंगाल बिहार के बॉर्डर में वो बन विष्णुपुर आता, वीर हमीर ने किताब सब चोरी कर लिया। राजा था लेकिन लूटता था, अपने राज्य की जो प्रजाओं को अच्छा रखता था, लेकिन जो रास्ते में जाने वाला दूसरे स्टेट से आते थे लोग जाते थे उनको लूटता था। एक तांत्रिक रखता था, तांत्रिक जो रास्ते में जाने वाले व्यक्ति बता देता था किसके पास पैसा है किसके पास पैसा किसके पास मूल्यवान वस्तु है, तो राजा फिर उसको प्रेम से बुलाकर वहां फिर रखता था, उसे रात्रि में कहता था विश्राम करो, थोड़ा अच्छा खान पान सो देखा लगा था, जो रात में फिर इसे सब लूट लेते। तो ये जो जा रहे थे कीर्तन पर नहीं संकीर्तन पार्टी बैल का गाड़ी में किताब से लोडिंग करके जा रहे थे तीनों कीर्तन करते करते, तो ज्योतिष बताया कि ये जो पार्टी आ रहे हैं ना इनका पास तो क्या है इसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इतने संपत्ति इनके पास में है जिसका कोई काउंट नहीं, बता नहीं जा सकता इसका मूल्य कितना है, अंक में नहीं बता जा सकता, इनके पास तो कुछ अमूल्य वस्तु ऐसे लग रहा है, इसके मूल्य को भी निर्धारित नहीं किया जाएगा। राजा ने बड़ा खुश होकर बोला कुछ बहुत कुछ संपत्ति है, इसलिए राजा ने इतने को कहा कि बस यहाँ रहो, हमारे गार्डन में आज रात को कीर्तन करो भजन करो, साधु लोग है अच्छा है भजन कीर्तन होगा। तो उनको रुके रात को वहां पर, राजा ने जो फीस्ट के लिए सब सरंजाम दे दिया, अच्छा प्रसाद बनाए, खा पी के वहां सो रहे थे, जो ये विश्राम लिए तो राजा ने इनके बैल गाड़ी को किताब का गाड़ी को पूरा लूट लिया। सोचा कि बहुत कुछ मूल्यवान वस्तु है इसमें, रास्ते में लेके घर में जब खुला देखा क्या था उसके अंदर, किताब ही किताब है किताब, और समझ गया अरे ये तो अमूल्य पुस्तक है, अभी क्या करेगा, चोरी को ले गया था उठा के, ये बेचारे तीनों सुबह सुबह उठे श्रीनिवास नरोत्तम और श्यामानंद रखी किताब की गाड़ी गाई है, लेकिन श्रीनिवास आचार्य कहे कि मैं हूं लीडर, इसलिए लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किताब लेके क्या करेगा कौन, कोई धन सोचकर इसको लूट लिया लेकिन जरूर वापस मिलेगा, लेकिन प्रचार कार्य में आप दोनों जाओ, है श्यामानंद को और नरोत्तम को भेज दिए, बोले आप जाओ प्रचार करो, मैं यहां पर वेट करके किताब को फिर दोबारा पुनरुद्धार करके फिर जाऊंगा, कि नहीं तो सब गोस्वामी लोग ने इतनी परिश्रम करके कई पुस्तक से लिखे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी कितनी परिश्रम करके किताब लिखे थे, अभी सारे सारे जाएगा तो क्या होगा, है तो इसलिए श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रहे। लेकिन उनकी भागवत की व्याख्या बहुत अच्छा है, राजा वो जो राजा था वीर हमीर उसके कई गुण बुरा थे लेकिन एक गुण उसका अच्छा था कि भागवत सुनने, वो ये साधु से बड़ी भागवत सुनने का इसको रुचि था। तो श्रीनिवास आचार्य को एक ब्राह्मण गांव के ब्राह्मण लेकर बोला कि हमारा राजा के पास में आप तो बहुत अच्छे भागवत पंडित हो दिख रहे हैं, उनके पास थोड़ा भागवत कही कथा सुनाइए राजा को। तो गए राजा के पास में जो भागवत की व्याख्या की है दशम स्कंद भागवत जो उसको सुना है
राजा इतनी प्रभावित हुआ था कि मैं ऐसी व्याख्या कभी भी कहीं सुना नहीं था, और इतने प्रभावित हो गया कि वो समझ गया कि ये जो किताब मैंने चोरी करके लाया है ये इनका ही किताब होगा। इसको पता लग गया राजा को। राजा ने सोते रोते रोते वहीं पर वही भागवत की व्यासासन के चरण वहीं गिरा, रोते रोते कहा कि मैं बहुत बड़े अपराधी हूं, आपके चरण में अपराध किया हूं, मेरे पास में आप आइए हमारे घर के अंदर, मेरे पास में कुछ पुस्तक है, हम लोग ऐसे ही आप मैंने हमारे जो मेरा जो सैनिक लोग हमारे जो राजकर्मचारी लोग ने वो किताब लेकर आए हैं हमारे घर में, मैं रखा हूं, मुझे लगता है कि पुस्तक हम क्या करेंगे, लेकिन ये आपका ही पुस्तक हो सकता है कि आप चेकिंग कर लीजिए। श्रीनिवास आचार्य जाकर जो देखेगी लकड़ी के बॉक्स में सब जैसे था, बड़े ही प्रसन्न हो गए, लेकिन हे सर कुछ किताब हम ही लेके जा रहे थे प्रचार के लिए, आपके लोग इसको रात्रि में उठा के लिए आए। तो श्रीनिवास आचार्य फिर राजा ने उनको सारा किताब वापस कर दी, और इतना ही नहीं बोले मैं जो अपराध किया हूं उसका प्रायश्चित के लिए मुझे आप अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। इसलिए वीर हामिर को फिर उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और राजा शिष्य बन गया तो राज्य में जितने भी थे उसका मंत्री उसका दरवाल नहीं था इसके जितने भी सब पार्षद थे कम से कम हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। किन के? श्रीनिवास आचार्य। फिर श्रीनिवास आचार्य समझने लगे कि मैं सोचने लगे कि ये गौरांग महाप्रभु कहीं लीला था कि गौरांग महाप्रभु चाहते थे कि ये नास्तिक का उद्धार हो, इसका ये वीर हामिर का है, इसलिए इन्होंने इसे ग्रंथ चोरी का लीला किया। लेकिन थोड़ा दिन वहां रहे तो उनको शिष्य बनाए, दो बार जब उनकी ऐसे भ्रमण करते करते फिर वीर हामिर के घर में पहुंचे। एक दिन श्रीनिवास आचार्य ने हठात एक दिन बैठकर ध्यान करते थे, प्रत्येक दिन भजन हरे कृष्ण भजन बैठकर आसन में जपता जपा करते थे कि आसन में जपते जपते उस दिन बस बैठे हुए बैठे और उठे ही नहीं है, बाबा जप रहे थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, बस ऐसे जपते जपते समाधिस्त हो गए बस बैठे हुए। बड़ा चिंतित हो गए क्या करेंगे, वीर हामिर ने बोला अब क्या करेंगे, गुरुदेव की ऐसी स्थिति हो गई तो बैठे बस समाधिस्त हो गए, बस माला हाथ में है बस समाधिस्त हो गए। तो भी सभी लोग सोचे कि देखो उनकी जो प्रिय शिष्य है कौन, रामचंद्र कविराज को बोला वो इसका कुछ समाधान करेंगे, नहीं तो और कुछ पता नहीं लगता, कैसे हम पता लगाएंगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो बंगाल में खबर दिए, बंगाल से वो तीन दिन में फिर पहुंचे आकर रामचंद्र कविराज, वो आकर देखे कि गुरुदेव ऐसे ही बैठे समाधिस्थ है, रुई लेकर थोड़ा सा नाक से देते तो लग रहा है कि हे मैंने यदि मरा हुआ तो गिर जाएगा ना, तब तो बैठे पूरा एकदम ध्यान समाधिस्थ है। तो वो भी दूसरे साइड आसन डालकर वो भी समाधि में बैठ गए, कौन रामचंद्र कविराज, जानने के लिए क्या कहां पर है क्या चल रहा है। तो उन्होंने समाधि लगाकर फिर बैठे बाजू में देखे, देखे कि उन्हें गुरुदेव बा श्रीनिवास आचार्य जी को अपने नित्य सिद्ध स्वरूप में देखे कि मणि मंजरी के रूप में उन्होंने जमुना के जल में जो जलकली हो रहा था राधा कृष्ण के जल मैंने जलकली में जब वो जलकली कर रहे थे राधारानी के एक नुक मैंने क्या नाक के एक क्या कहते हैं उसको नाथुनी गिर गई है एक छोटा सा, तो पानी में गिर गए तो उसको सारे लोग ढूंढ रहे हैं, सभी सखी मंजरी लोग ने ढूंढ रहे हैं, उनके बीच में ये भी ढूंढ रहे हैं इनके जो गुरु जी कौन श्रीनिवास आचार्य जी उनके जो नित्य स्वरूप में मणि मंजरी के रूप में उसको ढूंढ रहे हैं। राधा ने सबको बोला कि मैंने रूप मंजरी ने सबको लगा दिया ढूंढने के लिए, इसलिए वो लीला को स्मरण देख रहे मैंने ध्यान में देख रहे जब करने के समय में बस वो इसलिए वो लीला में संलग्न है समाधिस्थ है। तो इसलिए फिर रामचंद्र कविराज ये देखे कि गुरु जी ऐसा ही ध्यान में मैंने समाधि से इस प्रकार नित्य स्वरूप में राधारानी की सेवा में है, तो उन्होंने भी अपने स्वरूप इनको कहते कि रामचंद्र कविराज करुणा मंजरी थे, उन्होंने फिर ढूंढे उन्होंने इन मिल गया इनको कमल के पत्थर के एक कमला के कमल फूल के पाखड़े के नीचे और छुप गए, तो इन्होंने उठा के लाकर अपने गुरु जी को दिए हैं ध्यान में। फिर गुरु जी जो मिल गया था तुरंत इन्होंने लेकर रूप मंजरी को दिए, रूप मंजरी ने फिर लेकर किसको दिए ललिता सखी को दिए, ललिता सखी ने लेकर राधारानी, ऐसी परंपरा कोई भी कुछ मिला तो डायरेक्ट राधारानी के पास नहीं जाते, गुरु को अपने गुरु को नहीं छोड़ते हैं, जितने भी मंजरी है राधारानी के ग्रुप में इनमें रूप मंजरी श्रेष्ठ है लीडर है, और रूप मंजरी भी डायरेक्ट राधारानी को नहीं देते, वो लेकर फिर ललिता सखी की देती है, ललिता सखी के अंडर में कार्य करती है। तो इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य अपने स्वरूप को प्रकट कराए कि वो राधारानी की सेवा में कौन है मणि मंजरी, लेकिन जब खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने विग्रहों को प्रतिष्ठा किए, छह सेट के विग्रह नरोत्तम दास ठाकुर ने छह सेट विग्रह प्रतिष्ठित किए, श्री गौरांग, श्री वल्लभीकांत, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत, श्री राधारमण, छह सेट की विग्रह नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी में प्रतिष्ठित किए महाप्रभु के स्वप्नादेश से। तभी अभी वृंदावन में एक उनकी विग्रह है, श्री राधा, श्री ब्रजमोहन ज्ञान गोदड़ी में है, जाते हैं हम लोग जो नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभर आवे दर्शन करने। छह सेट के विग्रह जो निर्माण करने चुके थे उसमें जो मुख्य पुरोहित कार्य जो यज्ञ का सब पूरा सुपरविजन करते थे तो वो थे कौन, श्रीनिवास आचार्य मुख्य रूप में, वो जटी इंस्टॉलेशन का पूरा दायित्व उनके ऊपर था। श्यामानंद प्रभु वैष्णव सेवा करते थे, सर ये हाँ श्यामानंद प्रभु वैष्णव की देखभाल करते थे, गेस्ट गेस्ट इंचार्ज। लेकिन ये श्रीनिवास आचार्य खेतुरी महोत्सव में उपस्थित थे और उन्होंने सारे डेटी के इंस्टॉलेशन करने में मुख्य पुरोहित रूप में कि ये पंडित थे, ये कार्य करते थे। जिस खेतुरी फेस्टिवल इसीलिए फेमस है, क्योंकि इसलिए फेमस विशेष रूप में खेतुरी फेस्टिवल, वो खेतुरी जो ये पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है गौड़ीय संप्रदाय में, गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के बाद फिर जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल को सबसे पहले बार ऑर्गेनाइज रूप में जो पालन किए थे वो है नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम में, और ये छह सेट का डेटी उसमें इंस्टॉल किए गए थे। और इतना ही नहीं, वहां कीर्तन जो कीर्तन हुआ था उस कीर्तन के लीडर थे नरोत्तम दास ठाकुर, स्वयं लीडिंग करते थे, हजार हजार भक्त वैष्णव वहां नाचते थे गाते थे, जानवा माता आदि सब थे गोस्वामी मैंने कही। तो जब वो महासंकीर्तन हो रहा था तो उसके बीच में कौन प्रकट हुआ, खेतुरी के कीर्तन इसलिए प्रवेश तो उसके बीच में पंचतत्व प्रकट हुए साक्षात रूप में, श्री चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, शिवास, इसकी अला मुकुंद आदि जितने भी नरहरि आदि जितने भी भगवान की गौरांग गौरांग महाप्रभु पार्षद उस कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए और सभी भक्तों के साथ में वो भी नृत्य करने लगे, सभी को देख रहे थे सारे भक्त साक्षात रूप में देखे, साक्षात रूप में से फिर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को देखने की सौभाग्य मिला। इसलिए जी कहते कि अद्यावधि नित्य लड़ा करे गौरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी वाली पाए, गौरांग महाप्रभु को संकीर्तन लीला आज भी चल रहा है, कोई भाग्यवान है तो इसको देख सकता है। महाप्रभु ने सही पांच तत्व को पांचों को पांचों कोई शरीर नहीं त्यागे, केवल अंतर ध्यान हुए लीला में, अभी तक वो संकीर्तन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। यदि आपके पास में ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कीर्तनियां मिलेंगे और ऐसे ही महासंकीर्तन होगा तो फिर प्रकट हो सकते कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में प्रकट होकर नाचे पंचतत्व नाचे थे, और फिर जो सभी लोग प्रेम में विवल होकर नाचे गाए सभी पाए, फिर वो अंतर ध्यान जैसे आए थे सही हैं। तो ये खेतुरी कीर्तन की विशेष, इसलिए खेतुरी का जो उत्सव को विशेष गौड़ीय प्रश्नों में ध्यान दे, नरोत्तम दास ठाकुर जो खेतुरी में जो उत्सव किए थे गौरु पूर्णिमा उत्सव, उसमें गौरांग महाप्रभु सपार्षद प्रकट होकर नृत्य किए थे। श्रीनिवास आचार्य गृहस्थ थे, उनके दो पत्नी थे, पहले तो द्रौपदी गोपाल चक्रवर्ती डटर द्रौपदी को शादी किए थे, फिर बाद में गौरांग प्रिया एक व्यक्ति ने गए एक चक्र गांव के पास में, वहां पर रहता था एक ब्राह्मण, तो उसकी एक पुत्री था गौरांग प्रिया, लेकिन वो असाधारण पुत्री माने उसके बहुत अच्छे गुण थे, और लेकिन उसकी योग्य पत्ति के लिए वो ब्राह्मण ने बहुत चिंतित था। लेकिन एक दिन रात्रि में सोया था, स्वप्न में देखा गौरांग महाप्रभु ने उसको निर्देशन करे कि श्रीनिवास आचार्य ही इसके जीवन योग्य पति है। उन्हें आचार्य जो बैठे हुए थे, श्रीनिवास आचार्य जब गए थे प्रचार में तो बैठे हुए थे अपने वैशासन में, भागवत की कक्षा दे रहे थे, कक्षा देकर पास बैठे, ये व्यक्ति जाकर चरण में प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो और कहा कि मैं रात्रि में काल कुछ स्वप्न देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहे कि ठीक है, वो समझ गए, और उन पता था श्रीनिवास आचार्य मुस्कुराए, कहे ठीक है आपके घर में हमारे कमरे में आकर बात करो मेरे साथ। फिर उन्होंने अपने कन्या को गौरांग प्रिया को उन्होंने शुक्रदेवी के वो दूसरे एक पत्नी पहले थी, फिर भी इसको दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किए, और इस प्रकार ये वैष्णव समाज में विशेष रूप में भागवत की पंडित के रूप में प्रसिद्ध रहे। श्रीनिवास आचार्य इनकी प्रसिद्ध शिष्य में से रामचंद्र कविराज विशेष रूप में जाने जाते हैं। इनके साथ और एक रामचंद्र कविराज के भाई गोविंद कविराज, गोविंद दास हैं, जो आप गा रहे हो गीत भजो हुरे मन सिनंद नंदन, बड़ा फेमस गीत है। अंतिम लाइन में कहते कि गोविंद दास अभिलाषी रे नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तन। ये गोविंद दास इनकी भाई थे, रामचंद्र दास ये, लेकिन ये कविराज टाइटल इनको बाद में दी गई है। वृंदावन में जो आए हैं वृंदावन के गोस्वामी लोग ने दोनों भाई की कवित्वों को देखकर इनको कविराज बोलने लगे, रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज दो भाई। इसका श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में संक्षेप में कहे तो इनकी समाधि वृंदावन में है, शीतल धीर समीर कहते हैं जमुना साइड में, उस वहां पर है उनकी समाधि केसी घाट के आसपास। श्रीनिवास आचार्य वृंदावन में ही मैंने नित्यालय प्रवेश किए। और राधारमण आविर्भाव, राधारमण जी की आज आविर्भाव है, कौन आविर्भाव कराए हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी गोस्वामी छह गोस्वामी से सारे के सारे बंगाल के थे, लेकिन ये थे साउथ इंडिया के। और सब तो मैंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी एक ही परिवार के थे, रामकली से आए थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तक राम के थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र थे, ये बांग्लादेश से आए थे। और ये केवल आए थे कहाँ से? श्रीरंगम से। ये भेंकट भट्ट के पुत्र थे, चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास्य में गए थे तो उनके घर में रुके थे चार महीने, और गोपाल भट्ट वही महाप्रभु से मिले थे। छोटे बालक थे उस समय, 10-11 साल के बालक थे, लेकिन महाप्रभु के दर्शन करते ही उनके सहज प्रीति, महाप्रभु के प्रति जो प्रेम भावना उद्रेक हो गया था। गौरांग महाप्रभु ने इनको साक्षात श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देकर और इनको इनकी मन में जो भावना था प्रतिष्ठित कर दिया कि ये गौरांग ये ही श्याम सुंदर है, यही गौर सुंदर है और यही श्याम सुंदर के रूप में थे। कौन अभी गौर सुंदर के रूप में? महाप्रभु ने इनको स्वप्न में संपूर्ण नवदीप लीला को दर्शन देकर भक्ति में पूरा स्थिर मती कर दी। जब गौरांग महाप्रभु चार महीने उनके घर में रहकर निकाल रहे थे बाहर आने के लिए, आगे यात्रा में जो आगे बढ़ने के लिए, गोपाल ने उनके पीछे भागा। कौन? गोपाल भट्ट। है कि मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा, माता पिता के एकमात्र पुत्र थे वेंकट भट्ट के, एकमात्र पुत्र थे गोपाल भट्ट परिवार में, लेकिन है कि मैं महाप्रभु के साथ जाऊंगा, इनके बिना जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा। पीछे भागते रहा, 2 माइल तक महाप्रभु के पीछे पीछे भागते रहा, रोते रहते। तो महाप्रभु देखे उनके पिता माता भी भाग रहे हैं पीछे, महाप्रभु ने घूम के बोले कि देखो गोपाल, मैं से चंचल मत, मैं अभी समय नहीं हुआ, तुम्हारा माता पिता भी भक्त है, जाओ अभी माता पिता के साथ में रहो, जब तुम्हारे माता पिता महान भागवत भक्त है तो उनकी सेवा करो। क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने ऐसे परिवार को पूरा कृष्ण भक्त बने दिए थे, इसको पहले लक्ष्मीनारायण भक्त थे, रंगनाथ जी के श्रीरंगम में रंगनाथ जी के पुजारी थे वेंकट भट्ट, और लक्ष्मीनारायण को ही भगवान मानते थे। लेकिन गौरांग महाप्रभु चार महीने उनके घर में रहे, ये सारे तीनों भाई जो वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद, बाद में प्रबोधानंद सरस्वती आकर वृंदावन में रहने लगे, और तिरुमल्ल, तीन भाई थे, तीनों को भक्त बना, सभी को परिवार में जो लेक्चर दिए प्रभुपाल ने, जो इनको बताया कृष्ण की महिमा को, ये सब राज लक्ष्मीनारायण की भक्ति छोड़ के इसके भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए। महाप्रभु ने इनको मजाक करते करते बातचीत करते करते बताए, भाई तुम्हारे तो लक्ष्मी जो है वो तो वैकुंठ की अधीश्वरी है, लेकिन वो रास में नृत्य करने के लिए क्यों चाहती है? हम सुना कि लक्ष्मी जी ने तपस्या करते थे भगवान कृष्ण के रास में भाग लेने के लिए, तो उन्होंने समझा कि भाई रास में कृष्ण और नारायण में क्या भेद है, लक्ष्मी यदि कृष्ण की रास में नृत्य करना चाहती है उसमें तो दोष नहीं देखती है, क्योंकि नारायण और लक्ष्मी में कोई नहीं, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन महाप्रभु वो बात सही है, लेकिन इनको चांस ही नहीं मिला नृत्य करने के लिए, किसको? लक्ष्मी को है, क्योंकि वो राधा अनुगता नहीं होना चाहती थी। आज भी बिल्लो वन में तपस्या कर रही, आज भी बिल्लो वन में जाओगे लक्ष्मी जी बैठ के तपस्या कर रही, लेकिन वो लक्ष्मी के रूप में रहना चाहती, चार भुज चार हाथ में और ऐश्वर्य की देवी के रूप में, लेकिन साथ में रास में नृत्य करना चाहती। रास में जो नृत्य करेगा तो उसको पहले अनुगत होना पड़ेगा, किसका? राधा रानी, राशेश्वरी के चरण कमल में समर्पित हुए बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता, सखी मंदिर लोग भागा देंगे उसको वहां से। इसलिए महाप्रभु ने इनको इतने सुंदर समझाया कृष्ण की महिमा को, राधा कृष्ण की भक्ति का महिमा को, तो उन्होंने सारे लक्ष्मीनारायण वर्षिप छोड़कर फिर राधा कृष्ण की सेवा करने लगते हैं। तो इसलिए ये जो गोपाल भट्ट को फिर महाप्रभु ने शांत कराया, कहे कि देखो तुम्हारे माता पिता दोनों भक्त हैं, तुम इनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करते रहो, और लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूं शादी नहीं करो। अपने माता पिता के सामने कहे कि तुमको शादी नहीं करना, फिर वृंदावन आ जाना, माता पिता के देहांत की बात वृंदावन आ जाना। तो माता पिता भी श्रवण किए दोनों कि हमारा लड़का को महाप्रभु ने क्या कहा, शादी नहीं करनी। लेकिन दोनों भक्त थे, समझ गए कि हमारे परिवार के सब समस्त सभी को उद्धार करने के भार कौन ले लिया, गौरांग महाप्रभु ने ले लिया, सभी को वैकुंठ ले जाने के भार ये ले लिए। जब कहे कि हमारा लड़का को शादी नहीं करना, इसका मतलब है हम सभी को उद्धार करने के दायित्व ये ले लिए, क्योंकि पता था कि ये स्वयं कृष्ण है। सारे परिवार में स्वयं को श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देकर इनको कन्विंस कर देते महाप्रभु जी मैं कौन हूँ, मैं स्वयं कृष्ण हूँ। तो उनको पूरा पूरा परिवार में सभी को ये सिद्धांत प्रतीत था कि भगवान महाप्रभु कौन है। इस प्रकार गोपाल भट्ट जब अपने पितृ माता पिता के वियोग होने के बाद वृंदावन में आए, आकर रूप और सनातन के को मिले, रूप सनातन के तत्वावधान में रहे, और जब वृंदावन में आकर पहुंचे थोड़े देर में खबर रूप समय ने महाप्रभु के पास में खबर भेजे कि गोपाल भट्ट आ गए हैं वृंदावन में। तो महाप्रभु ने उनके लिए भेजे कुछ उपहार, एक आसन महाप्रभु ने जो डोरो को उपिन जो महाप्रभु स्वयं यूज करते थे, और जो बोहितवास और एक आसन, और जगन्नाथ जी का प्रसादी माला तुलसी प्रसाद, तो वो बारह हाथ माला होता जगन्नाथ जी का जो माला भेजे थे, आज भी राधावण मंदिर में रखे हैं, इसको दिखाते कभी कभी हैं महाप्रभु जी ने वस्त्र आदि वो रखे। तभी लेकिन थोड़े दिन में गौरांग महाप्रभु लीला को स्मरण कर लिए, गोपाल भट्ट बड़ा विहोल होकर रोने लगे दिन रात गौरांग महाप्रभु की विरह में, खान पान त्याग दी। तभी गौरांग मंत्री तभी महाप्रभु ने सपने कहे कि गोपाल भट्ट तुम नेपाल में जाओ, मुझे गंडुकी में प्राप्त गंडुकी में मर्जी दर्शन करो। अगर गए फिर महाप्रभु के ढूंढते ढूंढते सहारनपुर के पास में वहां देवगंज गांव है, वही रास्ते में गए, रात्रि में एक ब्राह्मण के घर में रहे, वहां पर भागवत चर्चा की रात्रि में। वो व्यक्ति इतनी प्रभावित हुआ, उसका दो लड़के थे, एक लड़का इनको दे दिया, इनको गोपाल भट्ट, कहा कि महात्मा जी आपने इतनी सुंदर बताया जीवन के लक्ष्य, और सब मेरे दो लड़के हैं, एक लड़के घर में, एक लड़के आपको दे दिया, आपकी सेवा में रहेगा, आप इसको भक्त बनाइए, भक्ति सिखाइए। आजकल कोई माता पिता देता है? आज जो राधारमण मंदिर में जो देख रहे गोस्वामी, कोई जो लड़का वो दान कर दिया था देवगंज गांव से, वो बात में गोपीनाथ पुजारी बना, गोपीनाथ पुजारी तो ब्रह्मचारी रहा, फिर बाद में उसका छोटा भाई जो घर में था उसको ले आया, तो वही दामोदर पुजारी उसकी वंशज आज राधारमण गोस्वामी के रूप में जाने जाते हैं, देवगंज गांव से आए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देवगंज गांव से वो लोग को कहे कि ठीक है मैं अभी तो तीर्थयात्रा में हूँ, बाद में भेज देना वृंदावन तुम्हारे द्वारा। तो उन्होंने गए फिर नेपाल में पहुंचे, जाकर देखे कि गंडुकी में स्नान करते थे, चारों साइड देख रहे थे कि कहाँ है महाप्रभु, ने कहा है गौरांग महाप्रभु, देखा नहीं हो रहा, लेकिन बड़े दुखी हो। जब कमंडोली में स्नान करने के बाद पानी लाकर इसे तर्पण करने के लिए ले रहे थे, तो वो जंपिंग करके आते थे क्या आग्राम से, बारह सिला जंपिंग करके आए, तीन बार फेंक दिए, फिर तीन बार फिर पानी लिए, फिर वही सिला जंपिंग करके आ रहे हैं। बोले मैं ये क्या है, मैं सालग्राम लेने के लिए थोड़ी आया हूँ, इधर सालग्राम क्यों आ रहे। तो अंत में इनको ऐसे अंतकरण से प्रेरणा मिला थी, महाप्रभु यही चाहते इन्हीं को लेकर जाओ। तो ये बारह शिला को उन्होंने लेकर आए, अपने गले में सबसे में एक झूली करके बांध के इसमें झुला कर रखते थे शिला को, है बारह सालग्राम शिला ऐसे ही झुला कर चलते। तभी वृंदावन में आया, जब भी कुटिया का कुटिया है, वो जमुना किनारे कुटिया था, राधारमण मंदिर में जाओ कि हाँ देखा लिखा हुआ राधारमण प्राकट्य स्थल है, जहां पर ओरिजिनल भजन कुटीर था गोपाल भट्ट गोस्वामी, वहीं पर रखते थे चढ़ाव को, पूजा करते थे, जमुना बाजू में था, जमुना स्नान करके वहां पूजा करते। तो सालग्राम को लेकर ऐसे ही गले में झूली में टांग कर घूमते थे, और जैसे काल कौन सा व्रत था, नृसिंह चतुर्दशी व्रत है, वो ब्रीफली कह रहा हूं, नृसिंह चतुर्दशी व्रत में पूर्ण उपवास रखे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, निर्जल व्रत रखे थे। शाम के समय में एक सेठ जी आया, वो था कहाँ का, बंगाल के था, कलकत्ता का, वो सभी गोस्वामी जो छह गोस्वामी थे और दूसरों का विग्रह था, सोचा कि सभी गोस्वामी का विग्रह होगा, तो पूछा कि वृंदावन में कौन कौन, सब लोग बताया कि ये छह गोस्वामी सबसे प्रसिद्ध बाबा है वृंदावन की। तो उन्होंने रूप गोस्वामी की गया और गोविंद देव के लिए कुछ अलंकार और वस्त्र दिया, फिर मदन मोहन के लिए सनातन गोस्वामी के पास में मदन मोहन के लिए वस्त्र अलंकार दिया, कुछ मुकुट सब दिया, फिर उन्होंने मधु पंडित के पास गोपीनाथ के लिए सौंप दिया, जो सब जहाँ दामोदर के मने ऐसे सभी गोस्वामी को सब अपने उसमें दामोदर के पटनी हुए थे, तो सभी अलंकार वस्त्र देकर कोई बताया कि और भी एक गोस्वामी है कौन, गोपाल भट्ट, तो गोपाल भट्ट के पास आए, गोपाल भट्ट बैठकर अपने भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। इसको पता नहीं कि इनके पास विग्रह है कि नहीं, अपने सालाग्राम रखे, बस उनके पास में कुछ वस्त्र और कुछ अलंकार दे गया, कुछ वस्त्र अलंकार मुकुट सब देके और वो चला गया। लेकिन ये तो बातचीत नहीं कर रहे थे, अपना व्रत मने पूरा मौन रख के जप कर रहे थे बैठ के, जो वो व्यक्ति चला गया इनको बड़ा दुख हुआ, ठीक है देखो ये वस्त्र अलंकार मुझे दे गया, मैं किसको पहनाऊ, मेरे पास तो सालाग्राम है, सालाग्राम शिला को कैसे बनाऊंगा पहनाऊंगा वस्त्र अलंकार है। तुमने सोचा कि बड़े दुखी रोते रोते इनके बोलने लगे, प्रभु आपने प्रहलाद के लिए कहां से प्रकट हो गए, प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हो गए, आपने ऐसे भक्त वत्सल हो, और यदि आप मेरे लिए भी श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो मैं इनको आपको पहनाता है वस्त्र अलंकार पहनाकर आपकी सेवा करता। तो इनके मन में ऐसे ही इच्छा प्रकट हुई, किनके मन में, गोपाल भट्ट के मन में। तो उस रात्रि में ऐसे ही कहकर उन्होंने जप करते करते थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में विश्राम किए, थोड़ा सा आंख झपकी लग गया, कोई कहते कि नहीं वो जमुना में स्नान करने के लिए गए थे, आते ही देखे कि वो जो बारह शिला रखे थे उनमें से दामोदर शिला था वो स्वयं प्रकटित हो चुके, किस प्रकार, श्री कृष्ण विग्रह के रूप में है, राधारमण के रूप में प्रकट हो चुके हैं, श्री राधारमण लाल की, सालाग्राम शिला से प्रकट हुए। आप कहे अरे मार्कर से लेकर रख दिया होगा, बोलता होगा सालाग्राम से प्रकट हुआ है, नहीं इसको प्रमाणित करने के लिए चिन्ह रखा गया। आप जो विग्रह देखोगे इन पीछ में पीठ पर सालाग्राम ऐसा ही लगा हुआ है, अभी तक सालाग्राम शिला ऐसे चपका हुआ है पीठ में, राधारमण की पीठ में प्रमाण की सालाग्राम से ही प्रकट हुए। तो गोपाल भट्ट देखकर इनके शोभा को राधारमण प्रकट हो गए, जो इच्छा उन्होंने व्यक्त किए थे कि नृसिंहदेव के पास कहे कि हे प्रभु आप प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हो गए, और मेरे लिए यदि आप श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो मैं ये वस्त्र अलंकार आपको पहना था। शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान टाल नहीं सके, स्वयं प्रकट हो गए उस सालग्राम शिला से राधा रमण के रूप में प्रकट हुए। और ये आज के ही दिन था, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि, श्री राधा रमण लाल की, राधा रमण लाल प्रकट हो गए। तो उन्होंने बोलाया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सारे गोस्वामी लोग ने आए और इनके नाम राधारमण रूप गोस्वामी ने रखे, क्योंकि उसमें वैष्णव समाज की विश्व वैष्णव सभा की वो अध्यक्ष थे रूप गोस्वामी, इसलिए रूप इनके नाम राधारमण कौन रखा, इसलिए रूप गोस्वामी ने रखा राधारमण उनके नाम रखे। लेकिन राधारमण प्रकट होने के बाद भी गोपाल भट्ट समस्या दुखी रहते थे, उनको गौरांग की विरह को सहन मैंने वो विरत नहीं हो रहा था, हमेशा गौरांग की बात होती विरह स्मरण हो रहा था, इसलिए राधारमण भी साक्षात में गौरांग के रूप में भी दर्शन देने लगे, बिल्कुल गोपाल भट्ट को। तो गोपाल भट्ट तभी शांत हो गए, तो समझ गए कि यही गौरांग है यही राधारमण है। इसी प्रकार आज के दिन इनकी राधारमण के प्राकट्य दिन है, विस्तार से तो और कुछ बहुत बता जा सकता है कि क्लास केवल होना चाहिए उसके लिए। और क्या आज है, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के बारे में तो दो चार क्लास है, क्या बोला है माधवेंद्रपुरी, ये कृष्ण भक्ति का कृष्ण भक्ति लतार प्रथम अंकुर है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं माधवेंद्रपुरी जो है कृष्ण भक्ति लतार प्रथम अंकुर है। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पुर भक्ति कल्पतरुरति प्रथम अंकुर है, ये जो भक्ति रूपी वृक्ष का पहला जो उद्गम है अंकुर है वो कौन है, माधवेंद्रपुरी। हमारे जो संप्रदाय माधव संप्रदाय के साथ इसीलिए जुड़ा हुआ, माधवाचार्य फिलोसफी हमारे फिलोसफी बहुत अंतर है, वो लक्ष्मीनारायण के मानते हैं तत्ववादी है, लक्ष्मीनारायण को सुप्रीम मानते, लेकिन फिर हम क्यों कहते हैं हमको माधवाचार्य के संप्रदाय में है, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि माधवाचार्य के संप्रदाय में ये व्यक्ति आए कौन, माधवेंद्रपुरी। माधवाचार्य के संप्रदाय में कोई राधा कृष्ण की पूजा पहले नहीं किया, इन्होंने राधा कृष्ण की पूजन प्रारंभ किया कौन, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कह रहे थे कि इनकी जदियों दक्षिण भारत में से आए, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा किताब लिखे हैं माधवेंद्रपुरी ने, उसके रूपा भी सारे किताब लिखे हैं, उनमें एक पद से पता लगता है कि माधवेंद्रपुरी कहां पर जन्म लिए थे। इनके जन्म का नवजौ वनी चंद्र बदनी वृंदावन बाटे माधवेंद्रपुरी रचित भाषा बर्नी पूर्णी पाटे पूर्णी पाठ नाम के गांव कहते कि बांग्लादेश में है सिहट्टा जिला में। कोई के इसलिए सोचते कि इनकी जन्मस्थान वहीं था सिहट्टा जिला में, बांग्लादेश में ही जन्म लिए। लेकिन बाद में भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में पहुंचे और जाकर वहां माधव संप्रदाय से लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षित हुए थे, दीक्षा लिए थे। और ये अजाचित संत थे, अजाचित संत क्या किसको मानते हैं, इसे खाने के लिए भोजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। वो किसको मांगते हैं खाने के लिए, माधुकरी भी नहीं करते, किसी को कुछ मांगते नहीं। खाना पीना यदि कोई भगवान की इच्छा से मिलता तो खाते थे, नहीं तो नहीं, अपना भजन मस्त रहते, चलते थे बस, हरि कीर्तन करके हरि भजन करके चलते थे। हैं कोई यदि अपने आप उनको देता था खाने के लिए तब खाते थे, नहीं तो नहीं। अजाचित बुद्धि, इसको कहते अजाचित बुद्धि। और ये गौरांग महाप्रभु भी परम गुरु थे, गौरांग महाप्रभु गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुर के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के विशेष रूप में परिचय होता है जब उन्होंने वृंदावन में पहुंचते हैं भ्रमण करते करते, गिरिराज की परिक्रमा करके गोविंद कुंड में विश्राम करते थे। और कौन आया उनके पास में, उसी से फेमस बने, सारा दुनिया में इनको पहुंचाने लोग माधवेंद्रपुरी को, भगवान ने इनको फेमस कराए। कौन, कृष्ण ने, जो की अजात महान प्रेमी भक्त थे, भगवान ने सोचते थे कि मेरी प्रेमी भक्त का परिचय हो, सारा दुनिया के लोग इन्हें पहचाने, इसलिए उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा करके रात मैंने संध्या के समय जब गोविंद कुंड के पास में कदम्ब वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, आज भी वो कदम्ब वृक्ष है, माधवेंद्रपुरी का बैठक आज भी है, 500 साल पुराने वृक्ष आज भी है, वहीं पर बैठे हुए थे। और शाम दिन भर कुछ खाए नहीं थे, अजाज से तो कोई कोई बुलाए नहीं, कुछ दिया नहीं, तो क्या करेंगे, परिक्रमा करके आगे बैठे थे अपने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तब गोपाल ने आया है, एक सांवला रंग की बालक, 13-14 साल की बालक, फिर वो क्या लोटा में दूध लेकर पहुंचे शाम के समय। अरे बाबा तो किसको ध्यान करता है, क्या नाम जपता है, किसको ध्यान करता है, सुबह से तो खाया नहीं पिया नहीं ऐसे बैठा है। तो बोले कि अरे तुझे क्या पता लगा मैं खाया कि नहीं। माधवेंद्रपुर बोले कि मैं खाया या नहीं पिया, खाया पिया नहीं, मैं थकावट हूं, तुझे पता कैसे लगा। लेकिन बालक को देखकर माधवेंद्रपुर आश्चर्यचकित होते हैं, उसके स्वभाव को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। तुझे कैसे पता लगा मैं खाया पिया नहीं। कृष्ण बोला कि अरे भक्तों के पास में छुपना तो बड़ा पहचान लगे, ये पकड़ लगे। बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, ये माता जी लोग सुबह आए थे ना पानी लेने, इधर गोविंद कुंड से स्नान करके पानी लेके गए, तो उन्होंने आपको देखा कदम उठे के नीचे बैठते हुए, तो उन्होंने कहा कि बाबा बैठा है, लगता है कि कुछ खाया पिया नहीं है, जो ब्रज में आते हैं तो माधुपुरी करी खा लेते, माधुपुरी बाबा तो खा लेते, और जो लोग मानते नहीं कुछ नहीं करते हैं तो अन्ना हार कोई रोटी मार के खा लेता, कोई फलाहार कर लेता, और यदि कोई नहीं मानता है अजाचित प्रति होता तो मैं लाकर उसको देता। इसलिए माता जी ने दूध की लोटा मेरे हाथ में भेज दिया आपको देने के लिए, आप दूध पी लो, बाद में लोटा ले लूंगा। और माधवेंद्र कोई डिटेल कुछ नहीं पाया था, बोले यार ये बालक कैसा है, इसको तो बड़ा मैं आकर्षण क्यों हो रहा है इसके प्रति, मेरे भौतिक संसार में किसके प्रति कभी आकर्षित नहीं होता, मैं तो ऐसे बयाली साधु हूँ, सब समय भ्रमण करता हूँ बस, लेकिन ये बालक के प्रति मेरे क्या आकर्षण क्यों हो रहा है। और बालक में जाने का टाइम थोड़ा पीछे घूम के देखकर मुश्किलाते हुए गया, लेकिन अच्छा ये इसका एड्रेस पूरा डिटेल लूंगा, जो वापस आएगा ना लोटा लेने के लिए आएगा ना, तो वो एड्रेस लूंगा डिटेल, क्या है कहाँ से आया। रात भर मैंने दूध पी लिए, दूध पीते ही उनके शरीर का सारे क्लांति मिट गया, माधवेंद्रपुरी पता लगा, समझ गए कि ये दूध ये भौतिक जगत का नहीं है, दूध तो मैं जिंदगी में बहुत पिया हूं लेकिन ये दूध पीते ही मेरे शरीर में शिहरण हो रहा है, प्रेम प्रेम ने प्रेम विकार प्रकट हो रहा है, अष्टसत की विकार प्रकट हो गया है कि अरे बालक कौन था, आने से मैं इसको पता लूंगा। लेकिन ऐसे कहकर बस लोटा धो के रखे और बैठकर हरे कृष्ण कर रहे थे, पूरा रात बैठकर जप कर रहे थे। और थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे आंख लग गया झपसा, तो स्वप्न में आ गया, कह के माधवेंद्र तुम्हारा लिए मैं कब से यहां पर वेट करके बैठा हूं, माधव आएगा मेरी सेवा करेगा, देखो मैं ये गोवर्धन के पर्वत के ऊपर मेरे जो क्या प्रपोत्र था, बजरनाभ नहीं, उन्होंने मुझे स्थापना किया था, स्थापना करके चला गया था, बाद में पूजा सेवा होता था, लेकिन ये मुसलमान के आक्रमण के भय से मेरे पुजारी लोग ने ये झाड़ी के नीचे छुपा दिया है। वो देखा एक बाल वाला आया और इनके हाथ पकड़कर लेके गया है शंकरस्वरण कुंड के नीचे, झाड़ी के नीचे दिखाया कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, देख मेरे शरीर में ये सब घास इतना धूल सब जम गया, घास उठ गया उग गया और मेरे झाड़ी के अंदर फेंक की मेरे पुजारी लोग चले गए, तब से मैं तुम्हारी रात मार्ग को देखकर बैठा यहाँ पर हूँ, कब माधवेंद्र आएगा मुझे यहाँ से उद्धार करके फिर मेरी सेवा पूजा प्रतिष्ठित करेगा, इसलिए तुम अभी जाओ गांव के वाले जो पास में जो गांव है अन्य और गांव के लोगों को उठाओ और मुझे यहाँ से उद्धार करो झाड़ी के अंदर से, फिर मुझे गोवर्धन के ऊपर, मैं गोवर्धन नाथ हूँ, गोवर्धन को मैं ही धारण किया था, अब तो मेरे प्रतिष्ठित करो मेरे सेवा पूजा, इसलिए माधवेंद्रपुरी स्वप्न देखकर बड़े आश्चर्यचकित होकर गांव वालों के पास गए। ब्रजवासियों को कहे कि ऐसा ही घटना तुम्हारे गांव के जो देवता है गोपाल, ये झाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, संकर्षण कुंड के अंदर किनारे जो झाड़ी है उसके अंदर है, चलो सब लोग मिलकर इसको वहां से निकालते। बहुत घोर जंगल था, सब कंटा था, तो इसलिए सब हथियार लेकर गया है, कंटा सब सफाई करके पहुंचे, देखिए थोड़ा सा जमीन से खुदाई कर देखिए गोपाल जी का विग्रह पड़ा हुआ है, तो देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, इनको उठाए और इनके शरीर से सब क्या मिट्टी घास हो गए से उसको सब साफ करके फिर गोविंद कुंड की जगह मैंने इनको उठा के ऊपर लेके जाएंगे गोवर्धन के ऊपर है, गादे से गोवर्धन ऊपर प्रतिष्ठित करने के लिए। तो गोपाल के विग्रह को लेकर गोवर्धन के ऊपर गए और शिला एक शिला के ऊपर बैठाए और दूसरे पीछे एक शिला सहारा देकर रख दी खड़े होने के लिए, और कम से कम 900 मटका में पानी भर के लेके गए और गोविंद कुंड से पानी के छान कर कपड़े से छानते थे, छानकर वो पवित्र जल में इनके पूरा शरीर को अच्छे से घिस कर माधवेंद्रपुरी सफाई की गोपाल सफाई करके फिर स्नान करे। इसके बाद गजवासी में पता चला कि गोपाल प्रकट हो गया, सब दूध दही घी मधु है पंचामृत पंचगव्य वहां पचन को पहले पंचगव्य स्नान कराए बाद में पंचामृत स्नान, अभिषेक कैसे करना है माधवेंद्रपुरी ने सिखाया कैसे अभिषेक होना चाहिए विग्रह में, पहले पंचगव्य स्नान बाद में पंचामृत स्नान। पंचगव्य होता है पांच चीज गाय से है, दूध दही घी गोबर और गोमूत्र, ये इसका है पंचगव्य। पहले विग्रह को ये पांच पंचगव्य में स्नान कराया जाता है, पांचों चीज, इसके बाद फिर पंचामृत स्नान, इसमें भी दूध दही घी के साथ मधु रहता है, मधु और शक्कर की वाटर शक्कर पानी, अंत में सफेद जल प्लेन वाटर, यदि पवित्र जल है तो गंगा जमुना की सरस्वती की तो अच्छा है, लेकिन तो लास्ट में साफ जल में फिर उनका अभिषेक किया जाता है। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को अभिषेक करा के फिर वहां प्रतिष्ठित कराया और प्रचार हो गया, गोपाल प्रकट हो गया, आसपास में सारे लोग भाग भाग कर आए गोपाल को दर्शन करने के लिए, अब सब भेंट लेकर आते थे, गोपाल प्रकट हो गया तो गांव अन्नकूट का शुरुआत हुआ, सब लोग ने बहुत चावल दाल आटा है सब्जियां सब आकर ढेर जम गया, जमा हो गए गोपाल के पास, जो लोग आते थे गोपाल को दर्शन करने के लिए जिसके पास गाय है एक एक गाय भी लाकर गोपाल को दान किया, गाय इतना हो गया गोपाल का हजार हजार गाय हो गई, बहुत बड़ा गौशाला बन गया। और ये जो अनाज वगैरह लाते अन्नकूट डेली चलने लगा, हर दिन अन्नकूट, पहला दिन जो अन्नकूट हुआ उसके कहते कि उसमें 10 आदमी राइस बना रहे थे, केवल भात बना भात प्रस्तुत कर राइस ढेर ऐसे पहाड़ की तरफ राइस बना बना के लोग पत्ते डालकर नीचे पत्ते डालकर अच्छे कपड़ा बिछाते थे, फिर पत्ता डाल के और फिर उसके ऊपर राइस सब डालते राइस, फिर कम से कम 5-10 लोग ने सब्जी बनाता था, कोई दाल बनाता था, ऐसे दाल का पूरा तलाव जैसे दाल और सब्जियां भेरी बहुत वेराइटी का मिठाइयां सब रखें। तो ये अन्नकूट गोपाल का अन्नकूट देखकर सभी को नंद महाराज का अन्नकूट का याद आ गया कि 5-10 साल पहले नंद महाराज ने भी सही गिरिराज जी के सामने अन्न गिरिराज जी के लिए अन्नकूट बनाया था। तो माधवेंद्रपुरी ने देखे कि गोपाल के पास वैसे भोग लगाए और कई दिनों की जो भूखा था गोपाल सब खाया, माधवेंद्रपुरी देख रहे थे सारे खा लिए है, जैसे वो अन्नकूट में खाए थे नंद महाराज के अन्नकूट में, और खाने के बाद कहा क्या गिरिराज जी ने आनी और आनी और आनी और, इसलिए गांव के नाम हुआ आनी और है, और लाओ और लाओ और लाओ चिल्लाने लगे और लाओ, अरे भाई कहां चले तुम्हें इतना दिए पहाड़ की तरफ खा दिया, फिर बोलते कि और लाओ है? तो बोले कि और नहीं है जितना था सारे दिए, तो फिर बोले ठीक है, फिर देखिए कि एक क्षण में सब देखे कि जैसा था पहले से ही भरा हुआ है। पहले देखे सब खा लिया, पूरा सारे पात्र खाली हो गए, लेकिन फिर एक सेकंड के बाद फिर सब भरा हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अधिशेषः, पूर्ण है जितने भी खाने से उसको कम नहीं होता है। इसलिए माधवेंद्रपुरी भी इस प्रकार देखे लीला, गोपाल जी सब पहले खा लिया, बहुत दिन का भूखा गोपाल सब कुछ खा लिया और सब कुछ पी लिया, जितने भी पीने का दिया हुआ था सब पी लिया, लेकिन बाद में फिर सब भक्तों को कृपा करने के लिए फिर सब अपने आप ऐसे ही भरा रहे। फिर माधवेंद्रपुरी सबको खिलाए पिलाए और ये दो वर्ष तक डेली ऐसे ही अन्नकूट चलते रहा, किसके पास? गोपाल के पास है हर दिन। गोपाल तो हजार हजार गाय बन गए और गौशाला बन गया है, कोई मथुरा का कोई राजा ने कोई राजा आकर के छोटा मंदिर भी बना दिया, कोई इनके लिए किचन बना दिया, कोई पाचेरी बना दिया, ऐसे सब सेठ लोग ने आकर के सेवा किया है। गोपाल जी का सेवा में कोई कमी नहीं रहा, माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इतना अच्छा सेवा चल रहा है गोपाल का। लेकिन दो साल ऐसे सेवा चलने के बाद गोपाल ने फिर सपने में आया है, महाप्रभु ने कहते कि ये घटना माधवेंद्रपुर की कथा को गौरांग महाप्रभु ने स्वयं कहे थे, नित्यानंद प्रभु हैं जो संन्यास लेकर आ रहे थे क्षीरचोरा गोपनाथ के पास में शाम के विश्राम की है, तो वहीं पर उन्होंने देखे कि नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित मुकुंद और जगदानंद चार व्यक्ति थे महाप्रभु के साथ में, तो उनके पास में महाप्रभु बैठकर आपको याद आ गया क्षीरचोरा गोपनाथ के बारे में, उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुर से सुने थे माधवेंद्रपुर के चरित्र, तो उन्होंने कह रहे थे प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं आर दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल तीन बार सपने आसी जारे आज्ञा कैल जार प्रेमे बस हया प्रकट हैला सेवा अंगीकार करी जगत तारिला जहा लगी गोपीनाथ खीर कैल चोरी से हेतु नाम हैला खीर चोरा करी है। खीर चोरा हरी बात करी है, ये स्वयं गौरांग महाप्रभु के मुखनिश्चित वाणी है, किसको ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? माधवेंद्र को, गौरांग महाप्रभु स्वयं है। नित्यानंद आप विचार करो, ये माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यवान तीनों जगत में कोई है? कोई भी नहीं। महाप्रभु कहने गौरांग महाप्रभु कहने की कोई भी नहीं है माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान। इसीलिए तीन तीन बार भगवान इनको स्वप्न में आए, एक बार कहे कि मैं यहां पर मैंने लेकर दिखाए, मैं कहां पर हूं प्राकट्य के लिए सपना दिखाए, प्रकट होकर फिर इनको आदेश दिए दो साल सेवा करने के बाद, फिर इनको कहे कि जाओ मेरा शरीर अभी क्या हो गया, शरीर में माधवेंद्र तुमने मेरे डेली स्नान कराता है किया, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में उत्ताप नहीं जा रहा है। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाय मलया जा चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल ने कहा कि माधवेंद्र मेरे शरीर का उत्ताप नहीं जा रहा है, गर्मी है, मलया जा चंदन मेरे शरीर में लेप दो तभी ये उत्ताप कमेगा। कहां से लाऊंगा मलया जा चंदन? तो गोपाल कहे मलया जा आना जाया निराचल हईते अन्य हईते नहे तुम्हें चल त्वरिते। निराचल में मिलेगा, कहां मिलेगा मलय चंदन? जगन्नाथ जी के पास मिलेगा, वहां जाना, दूसरी जगह से मार्केट से नहीं चलेगा, खरीद के ले आएगा मैसूर चंदन नहीं चलेगा है? और दूसरे भी कोई जाकर ले आएगा तो चेला बनाया, अभी नया नया बंगाल से दो ब्रह्मचारी बनाए आए थे, तुम शिष्य बनाए थे माधवेंद्र कोई है, तुम भी सोचेगा नहीं कि यंग ब्रह्मचारी भेज दूंगा चंदन लेके आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं चलेगा है। गोपाल ने कहे कि अन्य हिते न है, दूसरे की तरह नहीं, तुम ही चलो हरित, तुम स्वयं जाओ और चंदन लेके आओ है आदेश। तो महाप्रभु कहते कि ऐसे भाग्यवान कौन हो, स्वप्न में आदेश देकर प्रकट हुए, फिर बाद में दोबारा स्वप्न में आकर इनको चंदन लेने के लिए भेज दिए कहा जगन्नाथपुरी, क्योंकि निराकर में जगन्नाथ जी के पास में जो चंदन उत्सव ये सत्ययुग से महाराज इंद्रदेव के टाइम से चल रहा है। महाराज इंद्रदेव ने जब जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया रत्नमेदी पर और 12 महीने में कैसे उत्सव मनाया जाएगा बोले पूछे ब्रह्मा जी के माध्यम से पूछे, तो भगवान ने कहे कि जो गर्मी के सीजन आएगा वैशाख ज्येष्ठ में मेरे शरीर में क्या करना, चंदन की लेप देना। जगन्नाथ जी ने स्वयं साक्षात रूप में आदेश दिए थे महाराज इंद्रदेव ने, اس لیے چندن سیوا چلتا ہے جو پورے مانے جو گرمی کے سیزن میں چندن, اس لیے وہ نریندر سروور ہے وہاں پر بوٹ فیسٹیول ہوتا ہے, یہاں پر ڈیلی جگنناتھ جی کے جو وگرہ میں چندن لیپ کیا جاتا ہے اور ان کے جو ارچا وگرہ ہے چلند وگرہ اتسو وگرہ جو مدن موہن ان کو لے کے جاتے ہیں ڈیلی جاتے ہیں, وہاں بوٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے نریندر سروور بوٹ فیسٹیول کے لیے جگنناتھ جی کے, تو اس لیے وہ چندن ان کے پاس میں رہتا تھا. اڑیسہ کے راجا چندن جا کر مالیشیا سے لاتے تھے, مالیشیا میں پہلے بہت چندن کی بکھی ہوتی, اس لیے بہت مرے چندن وہاں پر بہت وسطن روپ سے ہوتا تھا, اس لیے اس کا نام ہی مالیشیا مرے چندن وہاں ہوتا تھا. اس لیے پوری کے راجا یہاں سے اناج بھر کر جہاز بھیجتے تھے اور وہاں سے ان کو اناج وہاں پر ایکسچینج کر کے چندن لے کر آتے تھے, سال بھر کے لیے چندن جگنناتھ کے لیے اسٹک رکھتے تھے. تو اس لیے گوپال کو پتا تھا نا, وہی گوپال ہی جگنناتھ ہیں, کہیں کہ وہیں سے جا کر لے کے آؤ چندن. اس لیے مہاراجندر پوری جدید 80 سال سے زیادہ عمر ہو گیا تھا, لیکن گوپال چندن, گوپال کو کیا چاہیے, چندن چاہیے. پریم میں بیوہ ہو گئے اپنے دونوں ساتھ ششیہ کو کہے, کیونکہ برہمچاری ششیہ بنگال سے آئے تھے, ان کو بنائے تھے کہ یہ ابھی گوپال کی کیئر لیتے رہو, میں چندن لے کر لے اٹھنے تک آئے واپس آنے تک. ایسے کہہ کر مہاراجندر پوری پھر ششیہ کو دے دیے سیوا گوپال کے اور چل دیے, لیکن جانے کے ٹائم میں انہوں نے بنگال ہو کر ایسے ہی گئے, بنگال کے اندر سے ایسے گھس کے گئے, شانتی پور میں پہنچے. ادویت آچاریہ جب دیکھے مادھویندر پوری کو ان کی ادبھوت کرشن پریم کی دیکھ کر مادھویندر نے وہ ادویت آچاریہ بیہوڑ ہو گئے, دیکھیے یہی میرے گرو بننے کی جگہ ہے, ان کو ہی میں ایک آدھیاتمک گرو بناؤں. اس لیے انہوں نے ونے کر کے ان سے دکھا لی, ادویت آچاریہ نے مادھویندر پوری سے دکھا لی. اس لیے مادھویندر پوری کے ششیہ ہے کون, ادویت آچاریہ, پنڈریک ودیان جی, شنی سیواس ٹھاکر, کتنے بھی جتنے ورشٹ گرو پرشد ہے یہ سارے مادھویندر پوری سے ہی دکھا لیے. بول نتیانند پربھو لکشمی پتی تیرتھ ہے, ان کی جو مادھویندر پوری جو گرو ہے ان سے نتیانند پربھو نے دکھا لیے, نہیں تو اور سب پرائے مادھویندر پوری سے ہی جو ورشٹ ویشنو گوڑ گوڑ دیش میں ان کے سب بھکت بنا کر پہلا رادھا کرشن وگرہ مادھویندر پوری نے پرتیشت کیے ادویت آچاریہ کے گھر میں, رادھا شیام سندر وگرہ. یہیں سے اپنے شیشیہ ادویت آچاریہ کو آدیش دی کہ رادھا رانی کے اکیلے کرشن نہیں, کرشن کے ساتھ میں رادھا رانی کی بھی سیوا کرنا, یہ سب سے پہلے رادھا کرشن کی سیوا کے پرکٹت کیے مادھویندر پوری, اس لیے ان کی وشیش استھان ہے گوڑیہ سمپردائے میں, مہاپربھو نے ان کو اس لیے بہت اچھ استھان دیے. تب ادویت آچاریہ گھر میں رادھا شیام سندر کو پرتشت کر کے ساری پھر آگے بڑھے پرچار کارج میں. اب بھرمن کرتے کرتے چندن لانے کے لیے جائیں گے, راستے میں بالیشور آ گیا, ابھی بھی ٹرین میں جاؤ گے تو بالیشور آئے گا راستہ میں, ہاوڑا سے جاؤ گے تو بالیشور اسٹیشن آئے گا, بالیشور اسٹیشن سے پھر وہاں 6 کلومیٹر دور پر گوپی ناتھ رہتے ریمنا میں. مادھویندر پوری کو پتا تھا کہ گوپی ناتھ کوئی آج کل کے وگرہ نہیں تھے, تتیاج سے رام چندر جی نے ان کو پرکٹ کرائے تھے. گوپی ناتھ جی جو کھپچور گوپی ناتھ ہیں ریمنا میں رہتے, جب بھگوان رام چندر جی نے پتر آدے سے بنواس میں جا کر چترکوٹ میں پہنچے, چترکوٹ میں رہتے تھے, تو ایک دن شام کے سمے میں سیتا رام پتھر کے اوپر بڑے پتھر کے اوپر بیٹھے تھے, تو شام کے سمے جو گوالا لوگ نے گائے کو بھاگاتے بھاگاتے لے کے جا رہے تھے ہنستے ہنستے, تو ان کو ہنسی آ گئی, رام چندر جی نے دیکھ کر مسکرائے ہنسے. سیتا جی نے کہے کہ ہنسنے کا تو کوئی کارن نہیں, کیوں ہنس رہے آپ, کیا ہنسنے کا کارن؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگلے جو جگ آنے والا دواپر اس میں سے کیسے لڑا ہوگا وہ مجھے سمرن آ رہا, میں ایسا ہی گائے کے پیچھے بھٹکتے رہوں گا, یہ جو گائے کو بھاگاتے ہنستے ہو جاتے ہیں میں بھی ایسے ہی گائے کے پیچھے بھاگوں گا, میں بھی ایسے ہی گوالا کی سیوا کروں گا, گائے کی سیوا کروں گا, مجھے گوپال کہیں گے, میں بھی ایسے بانسری وقت بجاتے ہوئے گائے کے پیچھے بھٹکتے رہوں گا. سیتا جی نے آگرہ پرکاش کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے لڑا ہوگا دوپہر جگ میں, بتائیے کیسے. اس لیے بھگوان نے ایک پتھر لے کر اس کے اوپر اپنے دھنش کے تیر کیے, تیر میں ہی انکت کیے تھے یہ وگرہ, کون سا, گوپی ناتھ جی کے وگرہ, اپنے دھنش پہ انکت کیے, اس کے ساتھ میں جو وہ ایک پتھر ہے جو کھیل کر گوپی ناتھ ہے وگرہ ہے, جیسے ہمارا الگ سے ایسے نہیں, ایک پتھر کے اندر بیچ میں یہ انکت کیے گئے وگرہ خدا یہ کہ, اور سائڈ میں ان کے قدم ورکھ ہے, گائے ہے, اشٹ گوپال, اشٹ سکھی, اوپر پنکھ دھرم کے ساتھ یدھ کرتے کا پکچر, یہ سب وہی ایک شیلا کے اوپر سب چتر دیا. اس لیے گوپی ناتھ کو رام چندر جی نے پکڑ کیا تھا لیکن آنکھ نہیں بنائے, ان کو انکت کر کے آنکھ نہیں بنائے, تو سیتا جی کہ کیا آنکھ نہیں بنا رہے, کیوں یہ انکت کر دیے, اتنے سندر دکھ رہے ہیں لیکن آنکھ کیوں نہیں. سیتا جی نے اپنے دھن لے کے اپنے ہاتھ سے آنکھ بنا دی, آنکھ بنا دینے کے بعد کہ اور تھوڑا اس کو اچھے سے کیجیے, ٹھیک سے کمپلیٹ نہیں, پورا اچھے سے فنیشنگ نہیں ہوا, भगवान कहे कि इसलिए तो मैं आंख नहीं बनाता था, आपको अभी आंख बना दी, ये जीवदान प्राप्त हो गया, आप शक्ति स्वरूपिणी, आपके स्पर्श से जीवदान हो गए, अभी दोबारा इनके शरीर में और फिनिशिंग नहीं होगा। सीता जी कहे कि आप मजाक कर रहे हैं, सीता जी लिए धनुष सोएंगे से जब शरीर में लगाते ही तुरंत खून निकला, खून निकला तो भगवान रामचंद्र कहे कि तुम अपराधी नहीं बने, अपराध क्या सेवा करो, सेवा करो अपराध किया, खून निकलने से शरीर से भगवान की विग्रह तुरंत प्रणाम किए, फिर सीताजी ने माफी मांगी, फिर गोपीनाथ की सबसे पहला सेवक पहले से भी कहा है सीताजी रामचंद्र जी का है, कभी रामचंद्र सीताजी के हरण होने के बाद फिर वो सेवा हनुमान जी को माफ ने रामचंद्र ने हनुमान को कही कि सेवा कर, उस दिन हनुमान और गोपीनाथ जी की सेवा की, लेकिन फिर बाद में हनुमान जी ने वो चित्रकूट के मैंने पर्वत के गुम्फे में छोड़ दिए थे, गजपति राजा पुरी के जो लांगुआ नरसिंह देव गए तो उनको रात्रि में वहां विश्राम कर रहे थे, उनको स्वप्न में आए गोपीनाथ कि देखो ये राजा तुम मेरी महान भक्त हो, जगन्नाथ जी के रूप में मैं तो तुम्हारे सेवा लेता हूँ, लेकिन मेरे को मैं भी गोपीनाथ के रूप में यहां रहता हूं, तो मुझे यहां से गुम्फा से मुक्त करो, यहां से लेकर चलो मुझे पुरी ले चलो तुम्हारे साथ, वहां तुम्हारी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। इसलिए वो राजा पुरी के राजा जब लेके आते थे फिर वो रेमणा बीच में आए तो वहीं रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो और फिर गोपीनाथ स्वप्न में कहते देखो ये रमणीय स्थान है, रामचंद्र की लड़ा में मैं यहां पर भी पधारा था, यहां पर ये स्थान में मुझे प्रतिष्ठित कर दो, पुरी तक जाने का जरूरत नहीं है, वो जगन्नाथ जी के साथ में वहां ऐश्वर्य जी की सेवा चलता, मुझे यहीं पर तुम रखो, पुरी के राजा को वहीं रमणा में प्रतिष्ठित कर दिए थे गोपीनाथ, माधवेंद्रपुरी की बात पता था कि गोपीनाथ इधर रहते हैं इसलिए दर्शन करने के लिए आए, रात्रि में शाम के समय पहुंचे, उस समय खीर भोग क्या जगन्नाथ जी का भोग मने जो शाम के समय रात्रि के स्वयं के पहले कुछ 12 आटिका, आटिका क्या समझते हैं मिट्टी का बर्तन, बड़ा बड़ा बर्तन होता है उसमें खीर भर भरकर 12 आटिका भोग लगता है, ये कोई बर्तन माने कि कोई तम माने क्या पीतल वास ये सब पात्र नहीं है, मिट्टी का पात्र है, बड़ा बड़ा पात्र होता है, तो खीर भर के 12 आटिका, 12 आटिका कहते हैं 12 पात्र में भोग लगता है जगह गोपीनाथ के पास, तो माधवेंद्रपुरी पूछे वो पुजारी को कौन भोग क्या क्या इधर भोग लगाते हो भगवान के पास में कैसे सेवा चलता है, तो उन्होंने सब बताए, माधवेंद्र सब बड़े खुश हुए कि समझ गए कि इधर बहुत अच्छा सेवा चलता है भगवान की, पुजारी कहते कहते कहा कि देखो सब तो ठीक है लेकिन शाम के समय जो भोग लगता है 12 आटिका जो इसको अमृत कली कहते हैं, अरे ऐसा भोग तीनों लोक में कहीं भी भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, केवल हमारे गोपीनाथ के पास चलता, बोले अच्छा ऐसा भोग कौन सा है, थोड़ा सा मेरे को टेस्ट करने यदि मिलेगा मेरे भी मेरे गोपाल को भी ऐसा ही भोग लगाऊंगा फिर, लेकिन मांगेंगे तो नहीं लेकिन मन में ऐसे विकार आ गया कि यदि टेस्ट करने के लिए थोड़ा मिले तो मेरे गोपाल के लिए बनाऊंगा, लेकिन दूसरे मूर्ति में सोचने आ रही मैं औजाजी वृत्ति रखा हूं और मन में सोच रहा हूं कि टेस्ट करूं, अभी भोग लगने जा रहा था उस समय भोग आटिका लेकर जा रहा था पुजारी अंदर में अल्टर के अंदर भोग लगाने, भोग आरती देखे देखकर तुरंत भाग चले गए, बोले इतनी बड़ी अपराधी बन गया मैं अपने आप मन में यदि अजाचित वृत्ति रखते हुए भी फिर मन में चिंतन करने लगा खीर को आसादन करने के लिए, दुखी होकर चले गए वहां से जाकर मार्केट प्लेस में बटर गुट्ठे के नीचे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो गोपीनाथ को सहन नहीं हुआ, गोपीनाथ ने जो 12 आटिका था भोग एक आटिका को छुपा दिया, अपने चरण के चरण के दोनों छंदा चरण के बीच में रखी, उसका पर अपना अंचल अपना धोती को डाल दिया, छुप गया उधर, पुजारी लोग उठा के लाया, अगर भोग मैंने 11 लगाया था अपने 12 लगाया था 11 उठा के लाया, एक हेड पुजारी सब लोग झगड़ा लगने लगा, एक कहां गया, 12 था 11 है एक कहां गया, पुजारी लोग अपने अपने झगड़ा लगे, बोले कोई किसको दे दिया छुपा के डोनेशन लेने के, तो झगड़ा तो शुरू पहले बात में और क्या करेंगे, मिला नहीं कि धूमधाम के बस चले गए, लेकिन रात्रि में 12 बजे हेड पुजारी को सपने में आए गोपीनाथ है, क्या अरे पुजारी उठो उठो तुम जो खीर का आटिका के लिए झगड़ा करते थे वो मैंने छुपा के रखा हूं, मेरा दोनों चरण के छंदा चरण के बीच में मैंने इसको रखकर मैंने धोती डाल दिया इसलिए आप लोग देख नहीं पाए, मेरे एक महान भक्त इधर पधारा है, तीनों लोक के ऐसे भक्त तीनों लोक में भी ऐसे मेरे कोई भक्त नहीं है, माधवेंद्रपुरी एक सन्यासी पधारा है इधर और वो अजाचित पुत्र रखा है इसको मांगता नहीं है देने से ही खाएगा नहीं तो नहीं, और लेकिन मेरे ये अमृत के लिए खीर भोग को आस्वादन करने की उसके मन में इच्छा प्रकट हुई थी क्योंकि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मैं ही गोपाल के रूप में इसके लिए सेवित बिक रहा हूं, अपने गोपाल को भी ऐसे ही खिलाने के लिए मन में इच्छा रखकर इसको टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने छुपा के रखा, तुम जाओ ये माधवेंद्रपुरी को लेकर एक खीर का जो वाटिका है पात्र लेकर दे दो। वो मार्केट के बीच में बटों को खेत के नीचे बैठकर अपना भजन कर रहा है, सोया नहीं, रो रहा है, क्योंकि सोच रहा है कि मैंने मन में ऐसे विचार किया खीर का आस्वादन करने में तो अपराधी बन गया। पुजारी ने उठा बोला कि अरे ऐसे कौन सा भक्त आ गया, हजार सालों से हमें पूजा करते थे, कोई गोपीनाथ किसको सपने में आकर बात नहीं करता था, आज ऐसे कोई भक्त आ गया जिसके लिए गोपीनाथ को हमारे साथ बात करना पड़ा। बड़ा बिहोर हो गया वो बेचारे, उठकर स्नान कर तुरंत गया, अल्टर खुलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का आदेश है अर्धरात्रि में चाबी खुल के अल्टर में जाया गया और घी का लैंप लगाया, उसमें ये नहीं था कि स्विच दे दो बस लाइट जल गया, नहीं, घी का बत्ती जलाया, देखा गोपीनाथ मुस्कुरा रहे हैं, जैसे स्वप्न में देखा था तो उनके चरण में देखा, दोनों चरण के बीच में ही आटी का रखा हुआ है, पात्र रखा हुआ है, उसको उठाया पुजारी, गोपीनाथ जी को देखा, दर्जा बंद फैले उस सिर में पाटी का लेकर पागल हो गया, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, ऐसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है, एक गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर चोरी करके रखा है, ले लो एक खीर, ले लो आस्वादन करो, कौन जो माधवेंद्रपुरी आकर मेरे पास खीर काटी का ले लो, ऐसे ही कहा कि हे माधवेंद्र माधवेंद्रपुरी तुम्हारा समान भाग्यवान तीनों जगत में कोई नहीं है, बोले तो हम सुने थे कि ये खीर माखन चोरी किया था, कब द्वापर माखन चोरी करता था गोपियों के घर में, अभी तो एक खीर भी चोरी करने लगा है, है? पागल हो गया, घूमते घूमते पहुंचा तो माधवेंद्रपुरी तो खड़े थे, बड़े बार बार पुकार रहे, तो बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोले मेरे में ही माधवेंद्रपुरी, लेकिन आपकी कैसे सेवा कर सकूं, बोले आप माधवेंद्रपुरी हो, तुरंत उठकर वो पुजारी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श कर मतलब माधवेंद्रपुरी पीछे भर के वो ही प्रणाम करे, पुजारी को आटिका रख दिया साइड में। तो पुजारी साहब कहा कि गोपीनाथ ने काल रात को ऐसे ही किया आपके लिए, ये चोरी कर लिया क्या खीर भोग का, ये आटिका ये चोरी करके रखा, खा लो उसको, देखो मुझे तो मंगल आरती करना, मैं जा रहा हूं, फिर सुबह सुबह आना मंगल आरती में, फिर आप बातचीत करेंगे, अभी तुम्हारे समान भाग्यवान तीनों लोक में कोई नहीं है, गोपीनाथ तुम्हारे लिए चोर बन गया, आज बोले थे वो उसको बोलते थे गोपीनाथ, अभी आज से लोग क्या बन गए उसको, खीर चोर गोपीनाथ कहेंगे, खीर को चोरी किया है, काल से इसके नाम बदल जाएगा, हाँ अभी तक उसका नाम था केवल गोपीनाथ, गोपीनाथ के मंदिर लोग कहते थे, लेकिन काल से लोग बोलेंगे खीर चोर गोपीनाथ चोर है, सारा दुनिया की संपत्ति उनका है, चोर कैसे बन गए, ईशावासी एकदम सब सब उनका है, कहीं फिर चोर क्यों, किसी चोर कहा गया है, चोर क्यों बने, कैसे चोर क्यों कहा गया, क्यों कहते खीर चोर, तो छुपा के तो सब वस्तु उनके उनका छुपा लिया तो चोर थोड़ी बनते हैं, भोग जो होता है भगवान का संपत्ति है, भोग का जब एक बार भगवान खा लिया प्रसाद बन गया तो वो भगवान का नहीं होता है, किसका होता है, भक्त का होता है, ये प्रसाद को छुपा लिया, प्रसाद को चोरी कर लिया, ये पुजारी अफरिंग कर लिया तो खीर भोग मैंने भगवान इसको खा लिए और प्रसाद बन गया, लेकिन प्रसाद को फिर दोबारा छुपा के रख दिया अपने भक्त को, इसलिए चोर कहा गया। माधवेंद्रपुरी ऐसे ही जो खीर प्राप्त को पाया तो उनको बैठकर बड़े गोपीनाथ के बारे में सोचते हुए भगवान को मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाना पड़ा, पात्र को छुपा के रखे, दिन भर कुछ खाए नहीं थे, खीर को आस्वादन किए, आस्वादन करके वो मटका को तोड़ दिए, टुकड़े 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 सुख करके अपने उत्तरी में बांध लिए और कही कि शाम यदि सुबह तक रहूंगा इधर मंगल आरती तक क्या होगा, ये एडवर्टाइजमेंट होगा, ये जो पुजारी सबको बोल देगा इसके लिए खीर चोरी किया था कौन, गोपीनाथ ने कल रात में ऐसे किया खीर चोरी किया इसके लिए, फिर हजार लोग आएगा मुझे प्रणाम करेगा, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, हाँ सब लोग कहेगा माधवेंद्र की जय, फिर मेरे को पूजा करेंगे लोग, इसलिए यहाँ ना ठीक नहीं है, जगन्नाथ जी ने वो गोपीनाथ जी के मंदिर के चक्र को देखा वहीं पर प्रणाम किए और वही रात रात में ही भाग्य स्थान छोड़ते हैं। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि प्रतिष्ठा स्वभाव जगते विदित जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित, प्रतिष्ठार भये पुरी जाए पलाइया कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गोड़ाइया, करीब प्रतिष्ठा का स्वभाव यही होता है, जो शुद्ध भक्त होते प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, माधवेंद्र कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहे, भाग गए कि सुबह तक रहूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पूजा करेंगे लोग मेरी खाती बढ़ेगा, इसलिए भय से भाग गए वहां से, लेकिन प्रतिष्ठा कैसे स्वभाव है, जो पूजा प्रतिष्ठा मान नहीं चाहता उसी को ऐसे मिलते हैं, جو چاہتا نہیں ملیں گے اس کو, بھاگ کرے گا وہ نہیں ملتے, لیکن جو نہیں چاہتا اس کو ملیں گے. مادھویندر پوری پرتشٹھا کی بھائی سے, پوجا مان پرتشٹھا کی بھائی سے بھاگ گئے وہاں سے, ارد راتری سے ہی بھاگ گئے پوری کے مارگ پر. راستے میں ایک ایک ٹکڑے جو مٹکا کا پاتر رکھے اور ٹوڑکی جو رکھے تھے, جس پاتر بھگوان نے چوری کیے تھے, اس پاتر کا ایک ایک ٹکڑا ڈیلی کھاتے تھے مٹی راستہ میں. پوری پہنچ گئے تو پوری میں جا کر دیکھے کہ وہاں پہلے سے جو مادھویندر پوری کے بارے میں چرچا چلتا ہے. یہ پرتشٹھا کی بھائی سے بھاگے, لیکن وہاں پہنچتے ہی سب لوگ بات چیت کر رہے ہیں اس کے بارے میں, مادھویندر پوری کے بارے میں. تو پنڈے لوگ بولے یہ مادھویندر پوری کے پڑی میں کوئی ایسا بھکت نکلا, مادھویندر پوری کوئی تھا اور وہ گوردھن میں گوپال اس کے لیے پرکٹ ہوئے آ رہا تھا ادھر گوپیناتھ میں, اس کے گوپیناتھ جی نے اس کے لیے کھیر چوری کیا اور وہ ہم سنتے کہ وہ آ رہا ہے پوری میں چندن لینے کے لیے, اپنے گوپال نے اس کو بھیجا چندن لینے کے لیے. مادھو منتر بولی گیا یہاں بھی پہلے سے آتے ہیں, آنے کے پہلے میری چرچا چل رہا ہے, ابھی کیا کروں, سوچ رہے کہ پریچے نہ دوں ایسے چلے جاؤں, لیکن گوپال چندن کے لیے بولا ہے, چندن تو لینا پڑے گا نا, پریچے نہیں دوں چندن کون دے گا. تو جب پوچھا, لیکن ان کے تو سوبھاؤ تھا مندر میں پرویش کرتے ہی جگنناتھ مندر میں پریم میں بھیوڑ ہو کر نرتیہ کرنے لگا ہے, جور سے نرتیہ گانے لگے, بھیوڑ ہو کر مورچھت ہو جاتا زمین پر پتھر کھا کے گرنے لگے جگنناتھ جی کے سامنے. اور سب بولے کہ ارے ایسے ادبھت کبھی نرتیہ ہم دیکھے نہیں, جیسے نانا ناچنے گانے والا لگتا کہ یہی ہو سکتا ہے مادھویندر پوری ہے. کچھ پجاری لوگ نہ پوچھے, بابا آپ کا نام کیا ہے, مادھویندر پوری ہے نا کیا تمہارا نام, مادھویندر پوری کیا کریں گے بولنا, ابھی پریچے بھی دینا پڑے گا, بولے کہ ہاں میں وہی ادھم ہوں, میں ادھم پاپی ہوں, ویسے ہی ہیں پوری سے رکھتے ہوتے آمی سے لگیسٹ جدائی مادائی ہوتے آمی سے پاپسٹ. کشن داس کا داد روشن کر, جدائی مادائی سے بھی میں بڑا پاپی ہوں, اور ڈرین کے اندر جو کیڑے چلتے ہیں سڑے پانی کے اندر کیڑے چلتے, میں اس سے بھی ادھک گھڑت ہوں, میں وہی مادھویندر ہوں. اتنا کہتے کہ پوجاری لوگ ان کو پورا سننے میں اٹھا لیے, بولے آئی مادھویندر ہے آگے ہے, سب ہلا گلا ہو گیا, مادھویندر آ گئے, مادھویندر پوری آ گئے ہیں, سب جگنناتھ جی کا مہاپرساد لا کر ان کو لائے, اچھا سے کہ کیسا سیوا کریں گے. انہوں نے کہا کہ میرے گوپال نے مجھے بھیجا, تو اس کے لیے چندن کے لیے بھیجا ہے, چندن لے کے آنے کے لیے. تمہارا گوپو جگنناتھ جی جو چندن لگاتے ہو ڈیلی مالیشیا سے لائے, وہ مالائی چندن چاہیے میرے گوپال کو, اس کے شریر بھی بڑا گرم ہے, ابھی اتاپ بڑھ گیا اس کے شریر سے, مجھے بھیجا چندن کے لیے. پوجاری لوگ نے پھر اس کو سب اکاٹھی لے کے گئے راج کرمچاریوں کے پاس میں لے, مادھویندر پوری کے لیے ان سے بات چیت کر کے, بہت چندن, ایک مہن چندن, ایک مہن مانے 40 سیر, لگ بھگ 37-38 کلو چندن ہے, چندن اور 20 توڑا کپور, چندن کے ساتھ میں کپور دے کر گھستے ہیں, کپور دیے کہ یہ تو بدھ ہو گیا کیسے لے کے چلیں گے, اس لیے دو سیوک دیے ہیں, دو ویکتی اور دیے چندن کو لے کر ان کے ساتھ میں ان کو چلنے کے لیے پہنچانے کے لیے لاتا. اور راستہ میں چنگی آئے گا, چنگی میں ٹول ٹیکس ہے مانگے گا, ان کے پاس ایک نو پیسہ ہے نہیں, تو اس لیے ان کو پیسہ بھی کچھ دیے, اور ساتھ ساتھ راجا سے پتر لکھا کر دیے کہ یہ مادھویندر پوری کا جو یہ جو چندن لے کر جا رہے ہیں, یہ راجا نے پوری کے گجپتی راجا نے یہ چندن ان کو سیوا کے لیے, ان کا گوپال کی سیوا کے لیے دیے ہیں, یہ ٹول ٹیکس ہے فری ہے, لیکن یہ تو راجا کا پتر کہاں تک چلے گا, اڑیسہ کا سیما میں چلے گا نا, ان کو برندہ تک آئیں گے تو بیچ میں بہار آئے گا, یہ سب مسلم کنٹری تھا, اس میں سب مسلم اور مسلمان شاسن کرتے تھے بنگال بہار سے. اس لیے گوپال دیکھا کہ تب مادھویندر پور تو بہور ہو کر چندن لے کر چلے, لیکن ابھی یہ اڑیسہ کا باؤنڈری ختم ہو جائے گا تو یہ کہاں سے لے کے جائے گا, مسلمان لوگ چھین لے کے ان سے پھر چندن. اس لیے گوپال کو دیا آیا, جب انہوں نے واپس آنے کا ٹائم پھر چورا گوپیناتھ میں پہنچے, کہ ارے جانے کا ٹائم تو ایک بار گوپیناتھ جس نے میرے لیے کھیر چوری کیا تھا اس کو تو درشن کر کے دوبارہ جاؤں گا, پھر گوبردھن جاؤں گا. شام کو سر پہنچ گئے, ہیڈ پوجاری پہنچان لیا, بولے مادھویندر آ گئے, یہی ہے مادھویندر آ گئے, سن کر سارے پوجاری اکٹھی ہو گئے, ارے کون مادھویندر ہے, یہی ہے مادھویندر, گوپیناتھ اسی کے لیے کھیر چوری کیا تھا, رات کو لے کر اسی کو دے کے آیا تھا کھیر میں, یہی ہے سارے جمع ہو گیا, اور ان کو تو پورا ناچے گئے ان کو سب کو, اتنے لوگ بھیڑ ہو گیا, مادھویندر آئے مادھویندر آئے. تو پھر اس دن شام کو جو بھوگ لگ رہا تھا تو بارہ آٹی کا بھوگ سارا کو سارا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا, بولے بارہ پاتر کا کھیر سب لا کر ان کے سامنے رکھ دیے, بولے یہ آپ کا ہے, پتا نہیں آج پھر گوپیناتھ اور کچھ کرے گا, آپ اس کو بارہ آٹی کا آپ سو لو, مادھویندر پوری بیٹی اتنا کیا کریں گے, ہنسنے لگے. تو دو ویکتی تین لوگ تھے اس لیے دو آٹی کا لے لیے اس میں سے, بولے کہ آؤ وہ لوگ آپ لوگ لو, آپ لوگ کھاؤ, یہ کھیر بہت اسپیشل ہوتا ہے, اسے کیسا ایک شیر ایک شیر گائے کے دودھ ہوتا ہے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بہت گاڑھا دودھ ہوتا ہے, تو اس میں سے ایک شیر ایک کلو دودھ میں صرف اتنے چاول 50 گرام چاول ڈالتے بس. وہ چاول بھی ایسے آرڈینری چاول نہیں ہے, چاول ایسے رکھو گے پورا سگندھ ویاپت ہوگا چاروں سے, تو چاول اسپیشلی گوپناتھ کے لیے کھیتی میں بنایا جاتا ہے. تو بازار سے چاول نہیں جاتا گوپناتھ کی کھیر کے لیے, تو کھیر چاول سوئیں گوپناتھ مندر میں ہی کھیتی ہے, گوپناتھ جی کی بہت کھیتی ہے, وہ کھیتی میں بنایا اگا جاتا ہے اور وہ سپارٹ رہا تھا گوپناتھ جی کی کھیر سے. تو اسی راتری میں پھر مادھو مندر پوری وہ کھیر کھائے کھا کر سوئیں گے کا دھرم سوا تو نہیں تھا گیسٹ ہاؤس. پوجاری لوگ کہ مادھویندر آپ کرشن کی اتنے پریہ بھکت ہو جس کے لیے بھگوان نے کھیر چوری کیا, تو آپ مندر میں ہی سو سکتے, مندر کے آنگن میں سو جاؤ, الٹا تو بند ہو گیا آپ آنگن میں سو جاؤ. وہیں پر مادھویندر نے سوئے, راتری میں وشرام کیے, تو پھر گوپال نے آ گیا تیسری بار سپنا. مہاپر نے کہ تینوں بار سپنا آئی, تینوں بار سپنے آسے آجیا جارے آجیا پہلے تین بار آجیا کی, ایک بار تو प्रकट हुए आदेश देकर दोबारा चंदन के लिए भेजे, अब तीसरी बार फिर गोपाल आ गए जो गोपीनाथ मंदिर में सो रहे तेरे मना में स्वप्न में आए हैं कि माधवेंद्र उठो है? ये चंदन सुनो माधव चंदन कर्पूर चंदन सब पाइलाम सब, मुझे कर्पूर चंदन सब मिल गया, तुम जो लेके आया पूरी से कर्पूर चंदन, अभी तुम क्या करो है? गोपीनाथ आमार ऐसे गोपीनाथ हो आमार अंग भिन्न नय, मेरा अंग गोपीनाथ की अंग ये अलग नहीं है एक ही है, हम एक ही नंद के लाला है, मैं ही नंद के लाला वहां पर गोपाल के रूप में हो इधर गोपीनाथ के रूप में हूँ, यहाँ के चंदन देले हवे मोरो तापक्ष है, जब ये गोपीनाथ को तुम चंदन चढ़ाओगे पहनाओगे चंदन तो मेरा ताप भी क्षय हो जाएगा, कहाँ गोवर्धन में गोपाल के रूप में हूँ, गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप दोगे तो मेरा शरीर भी शीतल हो जाएगा, इसलिए तुम और कुछ विचार मत करो, ऐसा सोचना नहीं कि मैं चंदन इतना कष्ट करके लाया और गोपाल सेवा नहीं स्वीकार किया, ऐसा बात नहीं, ये गोपीनाथ और मैं भिन्न नहीं है, हमारा गोपाल और गोपीनाथ हम दोनों एक ही हैं, वहीं पर गोपीनाथ के रूप में हूँ, इसलिए तुम वहीं पर चंदन घिसा करो और गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेकर, तो गोपीनाथ के शरीर जब ठंडा हो जाएगा मेरा शरीर भी ठंडा हो गया, हमें एक ही व्यक्ति है, खाली विग्रह के रूप में अलग अलग रूप में पूजा प्राप्त करते हैं. तो सुबह उठकर फिर माधवेंद्रपुरी पुजारी मुझे जगह बोला कि देखो मेरे गोपाल ने कल रात को सपने में आके बोला कि ये गोपीनाथ और उससे कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये चंदन ही घिसा जाएगा और ये चंदन को गोपीनाथ के शरीर में लेप दिया जाएगा. ये अक्षय तृतीया का ठीक पहला दिन था, इसलिए अक्षय तृतीया का दिन नहीं माधवेंद्रपुरी पहले चंदन सेवा प्रारंभ की, किसके शरीर में? गोपीनाथ के शरीर में, खिरचोर गोपीनाथ. इसलिए सबसे पहले जो राधा कृष्ण विग्रह चंदन सेवा स्वीकार किए थे वो है गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ. कौन किसने किया था? माधवेंद्रपुर के हाथ से सबसे पहले चंदन सेवा स्वीकार किए. अब इसी से ही फिर परंपरा है पूरी गोसाई का जे आचरण सही सही धर्मशा पूरी गोसाई पूरी गोसाई माधवेंद्रपुरी जिसको आचरण करके सिखाया वही धर्म सिद्धांत के सार है और सभी आचार्य जो उसकी बात में जितने आए उसको अनुसरण किया. पुराण महाप्रभु कहे कि पूरी गोसाई जो आचरण करके सिखाया उसको सभी फॉलो करना क्योंकि इसी अक्षय तृतीया का दिन इन्होंने चंदन अभ्यास कराया भगवान को, इसलिए पूर्व पर्वती जितने भी आचार्य है ये भी राधा कृष्ण विग्रह को उसी दिन चंदन यात्रा प्रारंभ करते अक्षय तृतीया के दिन से वो राधा कृष्ण विग्रह में चंदन लेपते ना कृष्ण विग्रह विशेष गर्मी के समय, इसलिए माधवेंद्रपुर के माध्यम को माध्यम बनाकर राधा कृष्ण व भगवान गोपीनाथ और चंदन स्वीकार किए, इसलिए चंदन यात्रा महोत्सव मनाया पड़ा. राधा वहां पर रहे और एक जब तक एक मोहन चंदन था डेली घिस घिस के गोपीनाथ के शरीर में लगाते रहे. माधवेंद्रपुर के सब पास में दो सेवक थे, कहे कि पुजारी लोग बोले आप लोग भी सहयोग करो, इन्हें बाहर से यदि आपके पास लोग नहीं तो दे दो, मैं इनका पेमेंट भी कर दूंगा जो चंदन घिसने लगा. कब चंदन घिस के लगभग चंदन समाप्त होने तक वहां वर्णन आदि चतुर्माशा तक चलते रहा. जब चतुर्माशा प्रारंभ हुआ आषाढ़ पूर्णिमा कौन सा शयन एकादशी से, तब तक ये चंदन लेप होता था. जब शयन एकादशी आया तब फिर ठंडी समय आ गया, बारिश होने लगा, फिर उन्होंने माधवेंद्रपुरी फिर चतुर्माशा करने के लिए थोड़ा देर पूरी चले गए. तो इस प्रकार वर्णन आता है. तो माधवेंद्रपुरी इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते कि इनके समान भाग्यवान तीनों जगत में कोई नहीं, और उन्हीं के शिष्य थे ईश्वरपुरी. ईश्वरपुरी के शिष्य बने कौन? श्री गौरांग महाप्रभु. तो आज माधवेंद्रपुरी का भी आविर्भाव तिथि है। ठीक है, और कुछ वैसे बहुत समय हो गया, 10 बजे। ओके, बुद्ध पूर्णिमा बुद्धदेव के अभी बुद्धदेव को आप जानते हैं, पोपड़ा वस्तु में नेपाल में प्रकट हुए थे, किसके पुत्र के रूप में, ये इतिहास कहता है, लेकिन हमारा शास्त्र में और कुछ कहता है, भागवत में और कुछ कहता है। इतिहास कहते हैं, आजकल इतिहास लोग पढ़ते हैं ना बच्चे, कहते कि वो कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे सिद्धार्थ है, ये बात नहीं, गौतम बुद्ध बने हैं कहते हैं, लेकिन हमें भागवत और कुछ प्रमाण अलग देता है, कहते कि उनका बिहार में उनके जन्मस्थान है, उससे वो अलग हिस्ट्री है भागवत में। जो भी है, आज बुद्धदेव के भी बुद्ध पूर्णिमा आविर्भाव है, भगवान बुद्ध भी 10 अवतार में से एक अवतार माने जाते हैं। हैं, आज भगवान की बताया गया कि और कैलेंडर में वाटर पास्ट है, राधा कृष्ण के झूलन यात्रा और वाटर पास्ट टाइम बोट फेस्टिवल है, यहाँ बोट फेस्टिवल मनाते कभी, ठीक है, संक्षेप में आपको बताया गया। ओके, श्री राधा रमण लाल की जय, माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि की जय, श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव की जय, श्री परमेश्वरी दास ठाकुर की रोहाव की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, गुरु मनंदी।